ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वयं प्रेमपुरी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्यावन मुंबई में प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम के अंतर्गत अब विशेष कार्यक्रम है उपनिषद ज्ञान यज्ञ छांदोग्य उपनिषद सामवेद के अंतर्गत इसके ऊपर प्रारंभ हुआ। अभी प्रथम अध्याय का षष्ठ ब्राह्मण चल रहा है, द्वितीय मंत्र हो गया था, अभी साम रीक और प्राण मिलकर के साम है, इसके लिए देवरेवर आदित्य साम तदेतदेतस्याम रिच्यद्यूढं साम तस्माद् रिच्यद्यूढं साम गीयते देवरेव सादित्वमस्तत् साम। देवरेव रिक स्वर्ग रिक, ऋचा में आरूढ़ साम गान किया जाता है, तो रिक हो गया देव स्वर्ग, उसमें स्थित है आदित्य, आदित्य ही आकाश में स्वर्ग में जाना आना करते हैं, वो तो साम हुआ। ऋचा में जिस प्रकार साम ऐसे देव में आदित्य, तदेतत एतस्याम ऋचि अद्युढ़ साम, ये जो एतद साम इस ऋचा में आरूढ़ देवर परिचा में यह आदित्य रूप साम आरूढ़ है। तस्मात ऋचि अद्युढ़ साम गीयते, इसलिए ऋचा में साम को रख करके गान करते हैं। देवरव सा आदित्य अम, देव हो गया सा, देव स्त्रीलिंग है आशा, आदित्य अम पुल्लिंग शब्द है, दोनों मिलकर के तत् साम, देव आदित्य मिलकर के साम हुआ। साम सर्वात्मक करके स्वर्ग ही साम है। नक्षत्राणी चंद्रमा साम तदेतदेतस्याम रिच्यधूढं साम तस्मा रिच्यधूढं साम गीयते नक्षत्राणेव सा चंद्रमामस्तत् साम। नक्षत्राणेव ऋख, आकाश में नक्षत्र दिखते हैं रात में, ऋख के समान ऋचा में नक्षत्र दृष्टि करे, चंद्रमा साम, चंद्रमा है साम, ऋचा में जैसे साम इसी प्रकार नक्षत्र में चंद्र उत्कृष्ट दिखता है। तदेतत एतस्याम ऋचि अधिवडम साम, इसी नक्षत्र रूप ऋचा में साम चंद्र आरूढ़ है। तस्माद् ऋचि अधुढ़ साम गीयते, इसलिए ऋचा में साम को आरूढ़ करके गान करते हैं। श्लोक बोलेंगे उसमें साम गीत विशेष है, उसमें आरूढ़ करके उसमें श्लोक में ही उसको रख करके गान करते हैं। नक्षत्राणेव सा चंद्रमा अम, नक्षत्र हो गए सा चंद्रमा अम, ऐसा मिलकर के तत् साम, नक्षत्र चंद्र मिलकर के साम, ऐसा कहकर के सारे ब्रह्मांड सामात्मक है। जो साम का अवय उद्गित ओंकार है वो तद्रूप सारे ब्रह्मांड है। अथ यद एतद आदित्य से शुक्लम भा शैवरिक अथ यम नीलं परः कृष्णं तत्साम तदेतत एतस्याम ऋच्यदूढं साम तस्मा ऋच्यदूढं साम गीयते यद एतद आदित्य से शुक्लम भा, जो एतद कहकर के दिखाते हैं, जो दिखता है शुक्लम, शुक्ल सफेद वर्ण का प्रकाश है, सा ऋख, सा एव ऋख हुई ऋख है। अतय नीलम परह कृष्णम, नील है अत्यधिक कृष्ण है, अतिशयन कृष्ण, ऐसे सामान्यतः दिखता नहीं, जो समाहित तो योगियों को दिखता है, तेरी चे पर कृष्ण साम, ओ साम हुआ, शुक्ल में पर अत्यधिक कृष्ण रूप है, साम के समान हुआ। तदेतत एतस्याम ऋचा दूढ़ साम, इसी ऋचा में शुक्ल भार रूप प्रकाश में आरूढ़ साम कृष्ण, अत्यधिक कृष्ण रूप है, तस्मा ऋचि अधूढ़ साम गीयते, ऋचा में आरूढ़ करके साम का गान करते हैं। अथ यदेवी तद आदित्य से शुक्लम भा शैव साथय नीलम पर कृष्ण तदमस तसामाथय एषु अंतरादित्ये हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यस्मश्रु हिरण्यकेश आप्रणखा सर्वैव सुवर्ण अत यद एव एतद आदित्य से शुक्लम भा जो आदित्य में शुक्ल प्रकाश रूपे है जिसको पूर्व मंत्र में कहा गया री करके ये शुक्ल भा है सा एव सा वही सा है सा और अम मिल करके साम होता है शुक्ल भा सा एव सा भा शब्द से लिंग है सा अतय नीलम पर कृष्णम तदम जो नील काला अत्यधिक कृष्ण रूपे वो अम हुआ शुक्ल सा और अम मिल करके सा और अम मिल करके तत्साम अथय एसो अंतरादित्य हिरण्यमय पुरुष दृश्यते एसो एत दिखाते जो दिखता है वो भी समाहित दृष्टि होने पर दिखता है सामान्य रूप से नहीं दिखता है अंतर आदित्य आदित्य के अंदर पुरुष दिखता है हिरणमय हिरणमय का तो स्वर्ण सोना से बना हुआ वो चमकीला है प्रकाशमय इसलिए हिरणमय का हिरण्य स्मश्रु उसके दाढ़ी मुछ भी सोने के जैसे चमकीला है हिरण्य केश वाल भी सोने के जैसे चमकीला है आ प्रणखा सर्व एव सुवर्ण नखाग्र से लेकर के सारे शरीर सुवर्ण ही सुवर्ण चमकीला प्रकाश रूप है अंतरादित्य जो हिरणमय पुरुष कहा गया इसके पर ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया क्या चीज है आदित्य के अंदर ऐसे कौन पुरुष है जो सोना के जैसे उनके दाढ़ी मुझे सोने जैसे सारे शरीर सोने ऐसे कौन है तो वहां शंका करते समय पूर्व पीछे कहेगा आदित्य अभिमानी देवता हो सकता है अथवा कोई ऐसे योगाभ्यास करके योगी हो गया वो जाकर के वहां पहुंच करके अथवा कोई अपूर्व कोई पुरुष हो सकता है कौन पुरुष है ऐसा क्योंकि ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म है उसका नाम रूप नहीं है ये ना रूप वाला दिखता है वो कौन होगा तो ब्रह्म सूत्र में आया अंतस्तद धर्म उपदेशात अंत ब्रह्म है पर ब्रह्म परमात्मा ही है तद्धर्म उपदेशात उसके धर्म का उपदेश किया गया उसका धर्म पाप रहित आगे कहेंगे पाप रहित आगे मंत्र में आएगा निष्पाप है अपहत पापमा है ये आत्मा अपहत पापमा शुद्ध पाप रहित तो पर ब्रह्म ही है और बाकी कोई पाप रहित नहीं है पाप स्वरूप का कथन करने से स्वयं प्रकाश होने से स्वर्ण रूप कह दिया चमकीला रूप है स्वयं प्रकाश तो यह सूर्य के अंदर परमात्मा है परब्रह्म है परब्रह्म तो व्यापक सर्वत्र है उपासना करने के लिए आदित्य के अंदर परमात्मा है इसी दृष्टि से परमात्मा की उपासना करें ये ब्रह्म सूत्र में इसके ऊपर विचार करके निर्णय किया गया तो उसके लिए आगे भी कहते तस्य था कप्यासम पुंडरिकम एवं अक्षिणी तस्य उदित नाम सहस सर्वेभ्य पापमभ्य उदित उदित हवित सर्वेभ्य पापमभ्यो एवं वेद ये जो आदित्य मंडल में स्थित पुरुष है उसके चक्षु कैसे यथा कप्यासम पुंडरिकम एवं कपी है मरकट उसका आस आस उपविशन धातु से पड़ता है बंदर बैठता है जिसके द्वारा अर्थात कपी का जो पीछे भाग है लाल बंदर का जो पीछे भाग है बिल्कुल लाल लाल जो कपी के आस पृष्ठ भाग है वो जिस प्रकार लाल ऐसा ही कप्यास पुंडरिकम कमल रक्त कमल एवं एव अक्षिणी इसी प्रकार उसके आंख है उसमें आया ये परब्रह्म परमात्मा के चक्षु है उसके लिए उपमा देने के लिए कोई नहीं मिला बंदर के पीछे भाग जैसे ऐसे ही चक्षु कहना ये तो इसमें नहीं एक होता उपमा एक उपवित उपमा यहां कप्यास के समान चक्षु नहीं कहा गया कपी के पीछे भाग जैसे ऐसे चक्षु नहीं कहा गया कपी के पीछे भाग जैसे इस प्रकार जो कमल है कपि के पीछे भाग में जैसे लाल, ऐसे लाल जो कमल है, ऐसे कमल के शब्द से उनका आंख है। इसको कहते उपमित उपमा। पहले कमल का उपमान करने के लिए रक्त कमल के समान उनके चक्षु है, किन्तु कमल कैसे है? कप्यास के समान कमल है, पुंडरिकम कमल है, पद्म कप्यास हो गया पुंडरिक के लिए उपमा। जैसे कपि के पीछे भाग लाल, इस प्रकार जो पुंडरिक कमल है पद्म, एवं अक्षिणी इसी प्रकार चक्षु है। तो परमात्मा के चक्षु के लिए उपमा हो गया पुंडरिक कमल, उसी कमल के उपमा के लिए कप्यास, इसे उसको उपमित कप्यास से उपमित हो गया पुंडरिक, उसको उपमा करते चक्षु के लिए। तो निकृष्ट ही न उपमा नहीं है, ये ब्रह्मसूत्र में विचार किया गया, यहां भी भाष्य में कहा उपमित उपमान तो न हीन उपमा, हीन निकृष्ट नहीं है, ऐसे उनकी चक्षु है। तस् उदित नाम उद इति नाम, ये जो आदित्य मंडल में परमात्मा है उसका नाम है उद। उत है उपसर्ग, या क्या था उद आदि में आता है उद के उद, उद इति नाम ऐसे नाम है परमात्मा का, इस नाम से उसका चिंतन उपासन करे। स ऐसा सर्वेभ्य पापमभ्य उदित। उत नाम क्यों हुआ? क्योंकि वह जो परमात्मा है सारे पाप से उद्गत है, पाप रहित है। उदित उत ऊपर है, उद्गत उद का तो उद्ध ऊपर उठ गया, पाप रहित है। ये नाम जो बताया इसे गुण है पाप रहित है, उसका ये गौण नाम है। उदेति हवे सर्वेभ्य पापमभ्यो एवं वेद, जो इस प्रकार आदित्य मंडल में स्थित परमात्मा का उपासना करे, स्वयं प्रकाश परमात्मा है, सोना जैसे मूछ दाढ़ी भी केश भी शरीर पूरा साक्षात स्वयं प्रकाश प्रकाश रूप है। ये जो प्रकाश रूप परमात्मा, उसके आंख रक्त कमल के समान है, उनका नाम ऊत है। ऐसा जो परमात्मा को उपासना करता है स सर्वेभ्य पापमभ्य उदेति, पाप से रहित तो हो जाता है, क्योंकि पाप रहित तो परमात्मा का चिंतन करता है। उत नाम लेकर के शुद्ध पाप सर्वेभ्य पाप में उदित, सर्व पाप रहित तो परमात्मा का चिंतन करने से स्वयं पाप रहित तो हो जाता है। पाप है यह एवं वेद, इसे जो उपासना करता है। तस्यर्क च साम च गेष्णो तस्माद् उद्गितस् तस्माद् तेवोद्गातैतस्य हि गाता स स ये चामुस्मात् परांच लोकास् तेषां चेष्टे देवकामानां चेत्यधिदैवतम्। तस्य जो आदित्य मंडल पुरुष परमात्मा है, तस्य रिक् च साम च गेष्णो, गेष्णोता पर्व, एक ग्रंथि दूसरे ग्रंथि के बीच को पर्व कहते हैं, बांस में एक ग्रंथि दूसरे ग्रंथि के बीच में पर्व है, ये भाग अंश है, दो पर्व है रीक और साम। रीक जैसे पृथ्वी को री कहा, अग्नि को साम कहा, अग्नि साम ऋचा में अद्वैर साम पहले प्रारंभ हुआ था, यह हम एक वे रीक अग्नि साम ऐसे प्रारंभ से हुआ था, ये सो रीक साम आती, उसके पर्व दो भाग है। यही जो परमात्मा है रीक साम रूप दो भाग है। तस्माद उद्गित, इसलिए उसका नाम उद्गित हुआ, उत नाम वाला है और ऐसे गीत उसको कहते, रीक साम गेष्ण होने के कारण रीक साम गेष्ण वाला, रीक साम उसका पर्व है इसे कहना चाहिए, ऐसे नहीं कह करके उसको उद्गीत कहते, परोक्ष नाम लेते हैं, कहना चाहिए ये परमात्मा है, उसका दो भाग है एक रीक और एक साम, ये मिला हुआ परमात्मा, ऐसा नहीं कह करके उसको कहते उद्गीत है। उद्गीत क्यों कहते हैं? देवताओं का परोक्ष नाम लेने से देवता प्रसन्न होते हैं, जिन देवताओं का नाम लेते हैं सीधा नाम नहीं कह करके, गणेश भगवान को लंबोदर कहो प्रसन्न है, लंबोदराय नमः, पीताम्बराय नमः, धनुर्धराय, ऐसे सब नाम लेने से देवता प्रसन्न होते हैं। ते परोक्ष नाम लिया वो उद्गीत कहा गया, ये उद्गीत है। तस्मात् तो एव उद्गाता, जो उद्गान करता है साम गान करता है, उदह गाता उद्गाता, ऊत को गान करने वाले उद्गाता हुआ। किसका गान करने वाला? ऊत का। ऊत क्या है? परमात्मा का नाम बताया, ऊत है परमात्मा, परमात्मा का ही गान करता है इसलिए उद्गाता हुआ। जो साम वेद साम मंत्र बोलता है उसका नाम उद्गाता है, क्योंकि ऊत को गान करता है, ऊत है परमात्मा, परमात्मा का ही गान करता है। बताया था जो स्तोत्र करते स्तुति करते नमस्कार करते हैं, नमस्कार भी परमात्मा को ही करते हैं, स्तुति करते तो परमात्मा की स्तुति होती है, इसलिए जो साम गान करते हो तो परमात्मा का ही गान करते हैं। उद्गाता एतस्य ही गाता, स ये चमुस्मात परांच लोकाश तेषां चेष्टे देव कामनांच। सूर्य के ऊपर आगे स्वर्ग में आगे स्व महाजन तप सत्य जितने लोक है, जितने आगे काम काम्य है भोग्य है, उनके ऊपर ईश्वर हो जाता है ये परमात्मा। और देव कामानांच देवताओं को भोग्य जितने सब के ऊपर शासक, सब की प्रतिष्ठा, सब को धारण करने वाला कौन? आदित्य मंडल स्थित पुरुष, उससे आगे जितने है भोग्य ब्रह्मलोक तक सबका धारण करने वाला, सबका ईश्वर है, सबका मालिक है। आ ऊपर स्वर्ग में है, यहां तो भूर भूस हो गया, मह जन तप सत्य ब्रह्मलोक तक जितने है सबका ईश्वर है, सबको धारण करने वाले देव का मानव जो देवताओं का भोग्य सबको धारण करने वाले, यही हो गया देवता में सूर्य भगवान रूप से उद्गीत नाम है, उत नाम है, उनकी उपासना इस रूप से करे। आदित्य से ऊपर कहने के बाद अभी वो परमात्मा को दिखाते इधर, अथाध्यात्म वागैवरिक प्राण साम तदेतेतस्याम ऋच्यधूढ़ साम तस्मा ऋच्यधूढ़ साम गीयते वागैव सा प्राणमस्तत् साम। अथ अध्यात्म, पहले अधिदैवता हो गया देवता संबंधी, देवता में परमात्मा में केश उद्गीत स्वरूप है, आदित्य मंडल में परमात्मा है कहा गया। अथवा अध्यात्म देह के अंदर कैसे परमात्मा है? वागेवरिक प्राण साम या वागेरिक प्राण साम है, तदेतद एतस्याम ऋचा दुढ़ साम वाघ रूप ऋचा में प्राण रूप साम आरूढ़ है, तस्मा ऋचिया दुढ़ साम गियते ऋचा में आरूढ़ साम गान किया जाता है। वागेव अथाध्यात्म वाग ही रेक है प्राण साम है, यह ऋचा में साम आरूढ़ है, तस्मा ऋचि अधूढ़ साम गीयते वाग एव सा प्राणो अमस तत् साम। साम में एक सा और एक अम मिलकर एक साम हुआ, वाग एव सा वाग शब्द स्त्रीलिंग में सा प्राणो अमह पुलिंग है प्राण अमह साम हुआ। चक्षिरेवरी आत्मा साम तदेतस्यामृच्यधूढ़ साम तस्मा ऋच्यधूढ़ साम गीयते चक्षुरेव सात्मामस्तत् साम। चक्षुरेव ऋख, ये चक्षु भी ऋख है, ऋचा में चक्षु से दृष्टि करे चिंतन करे सर्वात्मक साम है, साम के अवय उद्गीत उपासना हुआ वो सर्वात्मक है, तो चक्षु भी सा चक्षुरेव ऋख चक्षुरेव ऋख हुआ। आत्मा साम, आत्मा है छाया, चक्षु में जो छाया प्रतिबिंब दिखता है उसको कहा चक्षुस्थ है वो साम हुआ। तदेतत एतस्याम ऋचि अधूढ़ साम, यही है मिथुन दो है ऋचा ऋख और साम, ऋचा में आरूढ़ साम है, चक्षु में प्रतिबिंब है, तस्मा ऋचि अधूढ़ साम ज्ञात ऋचा में आरूढ़ साम ज्ञान किया जाता है। चक्षुरेव सा आत्मा अमह, चक्षु क्या सा उसमें छाया आत्मा अम है, दोनों मिलकर के प्रतिबिंब विशिष्ट चक्षु हो गया साम। श्रोत्रमेव ऋग्मन साम तदेतस्यामृच्यदुढ़ साम तस्मृच्यदुढ़ साम गीयते श्रोत्रमेव सामन्वामस्तत्साम श्रोत्रम एव रिक श्रोतमेव श्रोत्र इंद्रिय रिक और मन हो गया साम श्रोत्र के अधिष्ठा है मन मन के द्वारा ही श्रवण इंद्रिय व्यापृत है उनसे वो दोनों मिलकर के तद एतत् मिथुन हुआ एतस्याम ऋच्यादुढ़ श्याम श्रवण इंद्रिय में आरूढ़ श्याम मन रूप इसलिए ऋचा में आरूढ़ करके श्याम गान करते हैं। श्रोत्र हो गया सा मन हो गया अम श्रवण इंद्रिय मन मिलकर के श्याम हुआ और जिससे लिए कहते देह में इसको दिखाते हैं शरीर के अंदर किस प्रकार आत्मा परमात्मा है। अथ यदेत अक्षण शुक्लम भा शैवरिक अथ यीलम पर कृष्ण तत्साम तदेतदेतस्यामृच्यदुढ़ साम तस्मृच्यदुढ़ साम गीयते अथ यदेतदक्षण शुक्लम भा शैव साथ यीलम पर कृष्ण तदमस्तत्साम एतदक्षण शुक्लम भा चक्षु में जो शुक्ल प्रकाश रूप है सा एव रीक ओ रीक रूप है ऋचा अथ नीलम पर कृष्णम चक्षु में जो काला अपन दिखता है नीलम अत्यधिक कृष्ण है तत् श्याम वो श्याम हुआ रीक में श्याम आरूढ़ होकर के गान करते हैं इसी प्रकार है चक्षु में काला अत्यधिक कृष्ण काला श्याम हुआ तदेतद्याम रिचि अरूढ़ श्यामे तस्माद ऋचि अधूढ़ साम गान किया जाता है ऋचा में आरूढ़ साम अतः यह देव एतत् शुक्ल अक्षण शुक्लम भा सा एव सा जो चक्षु में शुक्ल प्रकाश रूपे वह सा रहे सा साम में एक सा और एक अम शुक्ल भा हो गया सा अतः यह नीलम पर कृष्ण नील अत्यधिक कृष्ण रूपे तद अम वह अम हुआ दोनों मिलकर के तत् साम हुआ अथ ये स्वांतरक्षिणी पुरुषो दृश्यते शेरक तत्साम तदुक्तम तद्यजुस्तद ब्रह्म तस्य तदेव रूपम यदमुष्य रूपम यावमुष्य गेष्णु तौ गेष्णु यन्नाम तन्नाम अथ येषो अंतरक्षिणी पुरुष दृश्यते चक्ष के अंदर जो पुरुष दिखता है चक्ष के अंदर पुरुष दिखता है तो जो प्रतिबिंब दिखता है उसको नहीं लेना इसके बड़ी ब्रह्मसूत्र में विचार हुआ उसको लेकर के चक्षु में पुरुष दिखता है तो पूरा पीछे कहेगा जो प्रतिबिंब दिखता हुई है किंतु कोई सामान्य रहेगा तो प्रतिबिंब रहेगा नहीं तो प्रतिबिंब नहीं रहेगा इसलिए वो नहीं है कोई योगी भी नहीं जीव भी नहीं वो कहेंगे वही परमात्मा ही है जो सूर्य आदित्य मंडल में है वही चक्षु में है ये अब स्पष्ट करेंगे सा एव रीग वो जो पुरुष है वो हो गया रीग तत्साम वो री के अध्यात्म में वाग आदि आदि सब आगे प्रसिद्ध आगे उसमें साम श्रोत्र आदि सब जिसमें बताया रीक से वही री के वही साम है तद उत्थम जो वही री के वही साम है वही उक्त है उत्थव से के साथ स्तोत्र है साम है रीक शस्त्र उक्त इस नाम है कुछ स्तोत्र पाठ करते हैं तद यजु मंत्र भी है रीक हो गया श्लोकात्मक उक्त हो गया कुछ अक्षर स्तोत्र पढ़ते समय उक्त नाम कहे स्तोत्र हो गया रीक ये सब जितने है और कुछ वाक्य है इसको कहते यजु गद्यात्मक स्वाहा स्वधा वसट आदि प्रयोग करते इनको यजु कहते ये वेद में जितने वाक्य है वही रीका रीक है जो चाक्षुष पुरुष है वो परब्रह्म है सर्वात्मक है वही रीक भी है वही साम है वही उत है वही अजु है तद ब्रह्म शब्द से यहां परब्रह्म परमात्मा नहीं ब्रह्म इति त्रयो वेदा वेद त्रयात्मक भी है चाक्षुष पुरुष वेद त्रयात्मक है और इसका वही परमात्मा को लेना है अभी ब्रह्म वेद रूप भी वही है तस्य एतस्य तदेव रूपम यद अमुष्य रूपम चाक्षुष पुरुष का क्या स्वरूप है वही स्वरूप है जो अमुष्य उस आदित्य पुरुष का रूप है। आदित्य पुरुष का रूप कहता स्वयं प्रकाश स्वर्ण जैसे, इसी प्रकार चाक्षुष पुरुष भी वही रूप है, अर्थात वही स्वरूप है। यद अमुष्य रूप या अमुष्य गेष्णो तव गेष्णो, आदित्य मंडल पुरुष में जो दो पर्व है भाग हेरी कर शाम, भाग हेरे गेष्ण पर्व का ग्रंथि के बीच में पर्व होता है, ये बांस में भी ग्रंथि दो होता है बीच में पर्व होता है, इसे भी पर्व कहते एक एक फालन खाते, तो वो पर्व उसी का जो रीक शाम दो भाग है इसी चाक्षुष पुरुष का भी वही गेष्णो वही तव गेष्णो, यह नाम तन नाम उसका जो नाम उत नाम उसका ये नाम वही है, वही एक ही है। चक्ष आदित्य मंडल पुरुष चाक्षुष पुरुष एक है। आध्यात्म और अधिदेवता व्यष्टि और समष्टि रूप एक करके चिंतन करना है। समष्टि है देवता में आदित्य मंडल में स्थित और व्यष्टि है चाक्षुष पुरुष, ये चाक्षुष पुरुष आदित्य मंडल पुरुष एक ही है, एक ही रूप है, एक ही नाम है, वही पर्व है। इसलिए वही अभेद चिंतन करने के लिए जो यही है चाक्षुष पुरुष वही समष्टि रूप में है आदित्य रूप से। वही परमात्मा दो भाग कैसे हुआ, एक ही परमात्मा दो भाग, उपाधि से दो भाग वस्तु तो है कि दो नहीं है, स एकधा भवती त्रिधा भवती से कह करके अनेक प्रकार उपाधि को लेकर के वस्तु तो दो नहीं है। अध्यात्म अधिदेव करके दो विभाग से उपाधि को लेकर के व्यष्टि समष्टि करके दो कहते हैं, बहुत वृक्ष है तो उसको कहते वन, और एक एक कहेंगे तो वृक्ष, एक एक नाम वृक्ष है, सारे वृक्ष को मिला देंगे तो वन हो गया, और वहां वृक्ष एक अवयव वन बड़ा हो गया, उसमें छोटा बड़ा घटाकाश महाकाश, आकाश एक है घट के अंदर है बाहर भी है, तो भी घटाकाश और महाकाश में इसे भेद है, घट के अंदर आकाश स्थित नहीं है, जो बाहर बहुत आकाश सारे आकाश घट के अंदर नहीं है, तो घटाकाश महाकाश में अवयव हो सकता है। यद्यपि न्याय शास्त्र में वैज्ञानिक लोग भी आकाश में अवयव कल्पना नहीं कर सकते हैं, किंतु वेदांत में अवयव सावयव है आकाश, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति होती है, जिसकी उत्पत्ति होती है सावयव है। माया में भी सत्व रजस्तम तीन गुण है, तीन अवयव हो गया, उसे माया रूप उपाधि से उत्पन्न होने के कारण जितने पदार्थ जिनकी उत्पत्ति होते सब सावयव, इसलिए आकाश का भी अवयव है। तो भी वैज्ञानिक दृष्टि हो न्याय दृष्टि से हो आकाश घटाकाश महाकाश कहेंगे, घट के अंतर्गत आकाश को घटाकाश कहेंगे, घट के बाहर बहुत दूर आकाश इसको घटाकाश नहीं कहेंगे, यहाँ घट है तो यहाँ घटाकाश है, उधर घटाकाश नहीं है, किन्तु महाकाश तो सर्वत्र है, एक एक कैसे होगा, ये तो आकाश में इसे कल्पना करेंगे, किन्तु चेतन में ऐसा नहीं होता है, इस पूरा शरीर में बड़ा चेतन है और इस अंगुली में छोटा चेतन है, ऐसा है, इसका एक अंश यहाँ ऐसे कहा जाएगा, जो चेतन पूरा है इसमें उसका अंश नहीं है, वही चेतन है जिस पर विद्युत है, प्रवाह सर्वत्र समान है, यहाँ भी थोड़े से स्पर्श करें तो विद्युत लगती है, और विद्युत एक ही है, नहीं कि थोड़े विद्युत यहाँ है थोड़े वहां, ऐसा नहीं, ये सब संबद्ध है, विद्युत का स्पर्श होता है, चेतन एक ही है, और उपाधि को लेकर के छोटा बड़ा व्यवहार करते है, एक समष्टि और एक व्यष्टि, और समष्टि व्यष्टि भेद हमको दिखता है, भेद के अनुवाद करके अभेद का विधान किया जाता है, सर्वत्र एक होता उद्देश्य एक होता विधेय, वो जो दिखता है वो रज्जु है सर्प नहीं है, जो सर्प है वो रज्जु है, आप सर्प सर्प कहते हो, कहते सर्प रज्जु है, सर्प को उद्देश्य करके विधेय कहते रज्जु है सर्प नहीं किंतु रज्जु है, दिखता है दो, ये दो नहीं किंतु एक है, दो जो दिखता है दो नहीं एक है, दो को उद्देश्य करके दोनों द्वित्व का निषेध करके एकत्व का विधान होता है, शास्त्र में वेद में द्वैत का भी कथन कहीं कथन किया गया, अद्वैत का भी कथन किया गया, आकाश आदि की सृष्टि कही गई, अभी द्वैत का कथन किया, अद्वैत का कथन किया, तो किसमें शास्त्र का तात्पर्य है? शब्द प्रमाण होता है अज्ञात ज्ञापक, जो आप नहीं जानते उसको शब्द से कहेंगे तो आपको ज्ञान होगा, और जो जानते हैं उसको यदि कोई शब्द से कहता है, बहुत कहता है, उस सुनने वाला सुनता नहीं, हमको पता है क्या कह रहा है, वो ज्ञापक ज्ञान जनक नहीं होता है, वो ज्ञान पहले से आपको है। जो ज्ञान आपको पहले से है उसको कोई शब्द से कहेगा तो ज्ञान अधिक नहीं होता, पहले से हमको ज्ञान है, बल्कि शब्द को अनुवाद कहते, व्यर्थ कहते, छोड़ो हमको मालूम है। शब्द प्रमाण होगा तभी यदि अज्ञात का ज्ञापक होगा, ज्ञात ज्ञापक होगा तो उस शब्द को प्रमाण नहीं करते हैं, कहते हैं। प्रमाण होता है प्रमा का जनक होगा, तो ज्ञान यथार्थ अनुभव का जनक होगा तो प्रमा कहेंगे। जब हमको मालूम है उसको कोई कहेगा तो हमको शब्द से कोई अलग ज्ञान नहीं होगा, हमको मालूम है ये पुष्प है, कोई कहेगा ये पुष्प है तो पुष्प कहेंगे तो उसी शब्द से हमको ज्ञान है, हमको प्रत्यक्ष है, पुष्प हमको आपको प्रत्यक्ष दिखता है, और कोई कहेगा ये पुष्प है, इस शब्द से फिर पुष्प का ज्ञान होगा, और ज्ञान तो पहले से है, तो शब्द व्यर्थ हुआ, इसलिए उसको प्रमाण नहीं कहते। प्रमाण शब्द वही होगा जो ज्ञान जनक हो, ज्ञान जनक तभी होगा जो अज्ञात हो, तद विषय का शब्द प्रयोग करे तो ज्ञान जनक होगा, जो ज्ञात है दिखता है उसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे तो कोई अपूर्व ज्ञान नहीं होता, ज्ञान पहले से है, उस शब्द को कहते अनुवाद। तो जो प्रसिद्ध है उसको अनुवाद करते हैं, जो अप्रसिद्ध है उसका विधान करते हैं। जो दिखता है कोई व्यक्ति आए सबको दिखता है, देखा करे तो ऐसा वैद्य, ऐसा विद्वान, जो दिखता है वैद्य है, ये विद्वान है, ये ऐसे कहकर दिखाते, ऐसा शास्त्रज्ञ, ऐसा कहकर, ऐसा कहकर जो दिखता है उसको दिखा दिया, और सबको मालूम नहीं ये वैद्य है, कहते ये तो वैद्य है, तो सबको जो ज्ञान नहीं उसको बताना है ये वैद्य है। और जो व्यक्ति दिखता है, दिखता है, ये दिखता है, वो तो दिखता है, जो दिखता है उसको अनुवाद करेंगे ये वैद्य है। तो द्वैत प्रपंच सबको दिखता है, उपदेश नहीं करेंगे, वेद नहीं पढ़ेंगे तो चंद्र सूर्य घटपट पृथ्वी जल ये भेद अलग अलग दिखेगा है, उसके लिए वेद पढ़ने की आवश्यकता है, तो भेद दिखता है, कटा मीठा मनुष्य पशु पक्षी जड़ चेतन सब दिखते हैं, इसके लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं। जो भेद प्रपंच दिखता है उसका अनुवाद करके ये नहीं है ब्रह्म है, सर्वम कलिदम ब्रह्म, इदम सर्वम जो दिखता है ऐसे नाना रूप नहीं है, ये तो एक अद्वितीय ब्रह्म है। इदम सर्वम जो दिख रहा है अनेकात्मक, उसका उद्देश्य अनुवाद करके, जो आप अनेक रूप देखते हो वो नहीं, एक अद्वितीय ब्रह्म है। जिसको आप सर्प समझकर डर रहे हो वो तो रज्जु है, सर्प रज्जु है, सर्प रज्जु का तो सर्प जो होगा रज्जु कैसे, यदि रज्जु है तो सर्प कैसे, हम कहते सर्प रज्जु है, ये वाक्य प्रमाण होगा, ये वाक्य प्रमाण है, सर्प रज्जु वाक्य प्रमाण है, कैसे प्रमाण है, सर्प जिसको आप समझते हो वो सर्प रज्जु है, अर्थात सर्प नहीं किंतु रज्जु है, ये उसका अर्थ है, कहा जाता है सर्प रज्जु, जिसको तुम सर्प समझते हो सर्प नहीं किंतु रज्जु है, ये कहने के लिए वो सर्प रज्जु है, सर्प को उद्देश्य किया, सर्प का विधान नहीं किया, सर्प आपको दिखता है वह हम उसको दिखाते नहीं, जिसको तुम सर्प समझते हो वो तो रज्जु है, इस प्रकार जो अनेक रूप दिखता है वो ब्रह्म है, ब्रह्म तो एक अद्वितीय है, अनेक रूप ब्रह्म कैसे होगा, अनेक रूप जो दिखता है वो ब्रह्म, ये वाक्य प्रमाण है, सर्वम कलिदम ब्रह्म, चांद्रिक उपनिषद में वाक्य प्रमाण कैसे होगा, सर्वम जो दिखता है अनेक रूप दिखता है, वस्तुतः तो अनेक रूप नहीं है किंतु अद्वितीय ब्रह्म है। तो जो प्रत्यक्ष दिखता उसका अनुवाद करते हैं, और जो अज्ञात उसका ज्ञान कराते हैं कि अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, और जो अनेक रूप दिखता है मिथ्या झूठा है, अनेक रूप वास्तव नहीं किंतु वास्तव अद्वितीय, ये कहने के लिए अद्वित तत्व एक है अद्वितीय, जिससे भिन्न कुछ भी नहीं, ये किस प्रमाण से, चक्षुरादि प्रमाण से दिखता है, एक अद्वितीय तत्व है करके, शास्त्र यदि प्रमाण नहीं होगा क्या प्रमाण इसमें, कोई कहेगा मैंने देखा कहेगा तो कोई मान लेगा, शास्त्र प्रमाण है अद्वैत तत्व के लिए, अद्वैत प्रपंच को देखने के लिए शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र के बिना द्वैत प्रपंच दिखेगा? पूरा दिखता है सब, इसलिए द्वैत का अनुवाद करते हैं, अद्वैत का विधान होता है। ये सर्व जो दिखता है अद्वितीय वो ब्रह्म है। इसी प्रकार यहां दो, एक आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, चाक्षुष पुरुष समानते में अलग, उपास्य मेरे सामने है, आगे से में आएगा। भेद के अनुवाद करके अभेद का विधान करते, एक ही है वो, जो आदित्य मंडल पुरुष है वही चाक्षुष पुरुष है, दो नहीं है, एक ही पुरुष है, दो दिखता है दो लगता है, उसका अनुवाद कर कहते वही एक है। स्थान के भेद से एक आदित्य मंडल में एक चक्षु में है, यहां भी है तो वहां भी है तो दो होगा। घड़ा के अंदर आकाश है और मठ के अंदर आकाश है तो दो हो जाएगा, एक ही आकाश है, घड़ा के अंदर भी मठ के अंदर घटा आकाश मठ आकाश, चक्षु में भी हुई वही भी है वहां है, एक ही आकाश घड़ा के अंदर बाहर है, एक ही पुरुष चक्षु में भी है वहां भी है, अब बीच में नहीं है क्या? सर्वत्र है, सर्वत्र होने पर चिंतन उपासना करने के लिए चाक्षु में है वहां है, तो एक ही तत्व सर्वत्र, ये बताने के लिए दो का निलया भेद शंका निवृत्ति के लिए कहते तो वही एक ही है। अरे चाक्षुष पुरुष में क्या सामर्थ्य है? आदित्य मंडल पुरुष में कहा उसके ऊपर लोक देवताओं का भोग्य, उसका ईश्वर वो मालिक है, उसका धारण करने वाला, इसके लिए कहते सय सय ये चे तस्मादर्वांच लोकास्ते सांचेस्ते मनुष्य कामानांचेति तद्य इमे वीणाया गायन्ति तन्ते गायन्ति तस्माते धनसनयः। ये चे तस्मादर्वांच लोका, यहां से नीचे जितने लोक है, पृथ्वी मंडल में है हम, आगे सात पाताल है, वहां जितने है तेषां चैष्टे तेषां ईश्वर ये ईश्वर होगा, एक ही चेतना उपाधि से भिन्न हुआ, आदित्य मंडल रहकर ऊपर लोगों का भी धारण करने वाला, यहां रहकर के नीचे सब का धारण करने वाला, नीचे सब लोक भोग्य का भी ईश्वर है, मनुष्य कामानाम च, और मनुष्य के भोग का भी वो मालिक है। इति तद इमे वीणाया गायंती, जो वीणा वादन करके गान करते, वीणा वादन करते ऐसे वाद्य बजाते बिना, ये वीणा वादन जो करते हैं गान करते हैं वो क्या करते हैं? एतम ते गायंती, इसी परमात्मा का ही गान करते हैं, वीणा बजा कर गान करते तो एतम इसी परमात्मा का गान करते, इस परमात्मा का गान करने से तस्माते धन सनय, इसलिए धनी है होते हैं, धन सनय धन के लाभ वाले होते, धन प्राप्त करते, संगीत बोलने वाले वीणादि वादन करने वाले बहुत धन प्राप्त करते हैं, वो सीखते से बजाते हैं लोग धन देकर सुनते हैं, क्यों? ये परमात्मा का ही गान करते हैं। वस्तुतः तो जो संगीत शास्त्र है ये एक शास्त्र है, संगीत जैसे शास्त्र है आयुर्वेद शास्त्र ज्योतिष शास्त्र, ये संगीत शास्त्र भी एक है, ये सामान्य नहीं है, जो जानते पढ़ते वो संगीत में बहुत उसमें सीखने का विषय है, स्वर के विषय में जानने का बहुत ही, सारे गामा पाधा करते प्रत्येक स्वर का अलग अलग भेद, सामान्य कोई हारमोनियम से बजा लेते बोलते थे कर देते, किंतु उसका जानना है क्या स्वर, उसमें सब बहुत प्रकार है, विभिन्न प्रकार है शास्त्र है, तो उसका तात्पर्य क्या है? सर्वत्र सब का तात्पर्य है परमात्मा प्राप्ति है, जो संगीत शास्त्र इसमें भी मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, ये नहीं कि अच्छा बोलकर लोगों को सुनाना इतने मात्र से पर्याप्त नहीं हुआ, उसमें अलग अलग रस से बोलना, अरे बोलने का किस प्रकार बोलना, किस प्रकार भक्ति होती, किस समय कैसे बोलना है, ऐसे करके बोलते समय भी परमात्मा की प्रार्थना। आयुर्वेद शास्त्र में जड़ी बूटी लाते हैं, जड़ी बूटी लाकर बनाते हैं, उस करने के लिए भी उपासना करनी पड़ती है, जड़ी बूटी जब पेड़ उखाड़ते हैं, पेड़ भी एक जीव है उसका उखाड़ते दोष लगता है, इसलिए उसके पहले प्रार्थना करके प्रायश्चित करके प्रार्थना करेंगे, उसको लाते हैं, किस समय लाना, किस प्रकार प्रार्थना, कैसे पूजा करनी करके लाना होता है, ये सीखने वाले शास्त्र आयुर्वेद शास्त्र हो ज्योतिष शास्त्र हो ये संगीत शास्त्र हो, उनको उपासना करनी पड़ती है, उपासना के बिना शास्त्र में प्रगति नहीं होती है, ऐसे तो उपासना संगीत शास्त्र करने के लिए अभ्यास करते ही, उसके साथ साथ आज जो लोग भिन्न धीरे धीरे उपासना नहीं करके निषिद्ध भोजन करके कोई बोल देते कुछ होता है, किन्तु वस्तुतः वो संगीत वास्तव संगीत नहीं है। जो संगीत बोलने से लोक मन में भक्ति आ जाएगी, जो संगीत के द्वारा परमात्मा की प्रार्थना होती, लोग बोल करके भावुक होकर प्रार्थना करते, वो संगीत शास्त्रीय संगीत इस शास्त्र में किस रस से बोल करके बोलते समय इसे बोलना है, अपने आप ही ऐसे भाव आ जाए। करने वाले अभ्यास करने वाले करते कराते हैं, और नहीं जानकर थोड़ा आधुनिक अलग अलग हो जाता है। जो संगीत शास्त्रीय है उसमें इसे लय विभिन्न है, बहुत जानते हुए जानने वाले सारा जीवन कोई एक शास्त्र में लगे तो उसमें अंतर प्राप्त नहीं करेगा। थोड़े बहुत करके गला अच्छा कुछ बोल दिया इतने में सब चलता है, कि उसमें गहराई में देखेंगे विचार करेंगे बहुत कुछ सीखना है। जी वीणा वादन करते हैं, वीणा वादन करते तो परमात्मा का ही गान करते, परमात्मा की स्तुति करते हैं, इसलिए उदाहरण प्राप्त करते हैं। अथ एतदेव विद्वान साम गायत्युभौ स गायति स्वमुनैव स ये चामुस्मात् परांच लोका तासां चाप्नोति देव कामांश। जो विद्वान इस प्रकार उद्गीत को जानता है, आदित्य मंडल में है और चक्षुष पुरुष है, चाक्षुष और आदित्य दोनों एक समझ करके उभौ स गायति दोनों ही गान करता है। जो वीणा वादन करता है दोनों परमात्मा के एक ही दोनों दो रूप से स्थित है एक ही। अमुना एवस इससे उसको भी चिंतन करता है, यहां जो इसकी उपासना करता है आदित्य मंडल पुरुष की उपासना करता है, आदित्य मंडल पुरुष की उपासना करता है तो इसकी उपासना करता है क्योंकि दोनों एक ही। ये चमुस्मात परांच लोका जो चाक्षुष पुरुष की उपासना करता है सूर्य मंडल के जितने ऊपर में भोग है उनको भी प्राप्त कर लेता है क्योंकि दोनों एक है। पहले क्या कहा था, सूर्य मंडल उपासना करने वाले उसके ऊपर सूर्य भगवान सूर्य मंडल में स्थित आगे लोक के काम भोग्यों का मालिक है और चाक्षुष पुरुष नीचे का है, किन्तु दोनों एक होने से जो चाक्षुष पुरुष का ही गान करता उपासना करता है वो आदित्य मंडल के ऊपर जो भोग उसको भी प्राप्त कर लेता है क्योंकि दोनों एक है। त्यासाम चापनति वो सब काम को प्राप्त करता है, देव कामांश देवताओं के भोग्य को भी प्राप्त करता है, यहां भी नीचे को प्राप्त करता है ऊपर प्राप्त करता है जो इसकी उपासना करते हैं। अर्थात दोनों के एकत्व चिंतन की उपासना करने से सारे ब्रह्मांड का अधीश्वर परमात्मा उसकी उपासना करता है तो सब प्राप्त करता है। अथवा नैव ये चेतस्माद् अर्वांश लोकाश तांश चापनति मनुष्य कामांश तस्मादुहैवं विदुद्गाता ब्रूयात कौन्ते कामम आगायानी श्येत एष एव कामागानस्येष्टे यैवं विद्वान् साम गायति साम गायति। अनेनैव ये च एतस्मार्वांच ऊपर भी यहां उपासना करके सूर्य मंडल के ऊपर भोग प्राप्त कर लेता है और इसके नीचे जो आदित्य मंडल पुरुष की उपासना करने वाले केवल ऊपर भोग प्राप्त करता ही बात नहीं, नीचे जो पाताल में जितने उनको ही प्राप्त कर लेता है। मनुष्य कामांश अर्थात देव काम मनुष्य काम ऊपर लोक प्राप्ति नीचे की सारे ब्रह्मांड की प्राप्ति होती है। तस्मादु एवं भी तो उद्गाता ब्रूयात ऐसा जो उपासना करने वाला उद्गाता यजमान से बोले, यजमान से पूछे तुम्हारे लिए क्या मैं काम प्राप्त कराऊं। जो उद्गान करने वाले ऋत्विक होते हैं उपासना करना चाहिए, उपासना करते हैं, उपासना करने से उनके पास सामर्थ्य आता है। तो ब्राह्मण जो कर्म करते यदि ठीक शास्त्रीय विधान के साथ उपासना करते हैं उनके पास सामर्थ्य होता है, यजमान से बोलेंगे तुम बताओ तुमको क्या चाहिए, क्या मैं तुमको देऊं, कौन ते काम आगाया नहीं थी, क्या मैं आगान करके तुमको प्राप्त कराऊं, किस भोग्य को प्राप्त कराऊं। ऐसे उद्गाता बोले, वेद भगवान कहते उद्गाता ऐसे बोले कौन ते काम आगाया नहीं ते तुम्हारे लिए कौन सा काम है आगान कर प्राप्त कराऊं। इति सहेव काम आगान से इष्टे वही जो उद्गाता उपासना करने वाले काम इच्छा से आगान के ईश्वर है ऐसे गान करके प्राप्त करा दे उसके पास सामर्थ्य। एवं विद्वान साम गायति साम गयाति, ऐसा जो विद्वान उपासना करने वाले साम गान करता है वो समर्थ है भोग प्राप्त स्वयं अपने लिए यजमान के लिए करा सकता है। अर्थात इस उपासना करने वाले में ऐसे सामर्थ्य होता है, जो उपासक है उसके पास सामर्थ्य जो चाहे प्राप्त कर सकता है ब्रह्मांड के अंतर्गत, और जो नहीं चाहता है हमेशा ही वैराग्य का ध्यान रखना। ब्रह्मांड ऐसा प्राप्त कर दिया कहते समय मन में अच्छा लगता है कि हमको मिल जाए, थोड़े देख के लिए उधर घुमाए ब्रह्मांड आदि क्या ब्रह्मलोक आदि। बहुत लोग कहते हम ब्रह्मलोक नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते मालूम है? यहां तो देश विदेश घूमना चाहते, ब्रह्मलोक क्यों नहीं चाहते? वहां विश्वास नहीं होता कोई ब्रह्मलोक होगा करके, यहां है अमेरिका तो थोड़ा देखकर आ जाएंगे, इंग्लैंड विदेश से घूमकर आ जाएंगे। ब्रह्मलोक कोई का है उसमें कैसा भोग है क्या है पता चलेगा? जो लोग देश विदेश घूमते हैं वहां जाने की इच्छा नहीं करेंगे? यदि जाने का जाने की संभावना है कोई साधन है और क्या है पता चले तो जाने की इच्छा नहीं करेंगे? अभी ग्रह उपग्रह भेजते हैं, यदि कोई ग्रह उपग्रह में जाने की व्यवस्था होगी कुछ हो गया लोग तुरंत कहेंगे टिकट करेंगे हम जाएंगे, करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करे जाने वाले लोग मिल जाएंगे बहुत लोगों। अन्य ग्रह में जाते निकले रकेट बेहते ना, यदि कहीं कुछ हो जाए तो घूमकर आएगा निकले तैयार हो जाएंगे बहुत लोग, जाकर दो चार दिन रहकर आना भोजन आदि व्यवस्था करेंगे और रकेट मिलेंगे, कितने लोग इकट्ठे हो जाएंगे करोड़ों करोड़ रुपया देकर जा सकते हैं। ब्रह्म लोग जाने के लिए इच्छा नहीं होती क्यों? ऐसे ब्रह्म लोग विश्वास नहीं, और आगे मरने के बाद क्या हुआ सोच नहीं पाते। नहीं तो स्वर्ग के लिए कर्म करते हैं, जो पुण्य कर्म करते करते अभी भी करते हैं करते हैं आगे स्वर्ग प्राप्ति के लिए, फिर तो लोग स्वर्ग में जाते हैं पुण्य कर्म करने वाले, कभी कभी उनको बुलाते पूछते तो कहते स्वर्ग में है करके। तो इसी प्रकार स्वर्ग जाते हैं तो आगे ब्रह्म लोग जाने की इच्छा होगी, तो ये कामना होने से प्राप्ति होती। किंतु जो मुमुक्षु है विचार करता विवेकवान, ये भोग प्राप्त करने के बाद भी भोग समाप्त हो जाएगा फिर आना पड़ेगा, ऐसे कितने भोग हो गए किंतु हमको चाहिए परमात्मा की प्राप्ति, वो लक्ष्य को भूले नहीं। काम्य प्राप्ति कामना की पूर्ति और ऐसे बड़े बड़े माया के सब जितने सब माया के अंतर्गत है उसके नाम सुनने से मन में आ जाते कि थोड़ा देख ले इधम में सियात इधम में सियात इच्छा हो जाती है, किंतु उसमें सावधान रहना चाहिए लक्ष्य हमारा क्या है। भूल जाते हैं जाते हैं कहीं लक्ष्य जाने के लिए रास्ता में कि दूसरे रास्ता में चले गए, किस उद्देश्य से घर से निकला, घर से निकला कहीं जाने के लिए, रास्ता में कहीं कुछ देखा देखकर खुश होकर उसके पीछे चलने लगा, उधर कुछ दिखता बहुत लोग चलते उधर जाकर गया उधर जाकर बैठ गया, तो उसको बुद्धिमान कोई कहता है? जिस उद्देश्य से गया था वो लेकर आना है, सामान्य कोई चीज के लिए भले ही कोई सब्जी के लिए बाजार गया वहां नहीं जाकर दूसरे थाने जाकर के ये कुछ कुछ दे करके रुपया खर्च कर आ गया, उसको क्या कहेंगे? मूर्ख कहें बेवकूफ कहेंगे? गया थे किस काम में क्या करके आया? रुपया लिया था खर्च करके कहीं आ गया, कहीं कुछ होटल में कुछ खा करके आ गया, गया था कुछ लाने के लिए। इसलिए लक्ष्य अपना क्या है किस लिए आए इसको भूलना नहीं चाहिए, उसमें चलना है। भूल जाते हैं, भूल जाना तो यही है कार्य भ्रंश से ही मूर्खता, अपने कार्य अपने सिद्ध नहीं कर पाते ही मूर्खता है। अभी इसमें शास्त्र के विषय में तो ज्ञान थोड़ा होता है समझते हैं, किंतु ज्ञान स्पष्ट होना चाहिए इसके लिए इसके परस्पर विचार की आवश्यकता होती है। सत्संग में मिल करके विचार करे, अभी हम सुना यहां भी बहुत में इसे भक्तों में कहीं पढ़ते हैं फिर बाद में आपस में पठन पाठन करते हैं, ये देखा कोई जाकर किसको पढ़ाते हैं कहीं पढ़ते हैं कोई पढ़ाते में देखा सब अलग अलग स्तर करके मिल करके पाठ करते चलाते हैं, यह भी पता चला ये लोग पढ़ते हैं भाई कहीं पढ़ाते हैं वो कोई पढ़ते हैं कहीं पढ़ाते कोई पढ़ने पढ़ाने वाले गए थे हमारे पास ऋषिकेश में ज्ञान यज्ञ में वो पढ़ाते बहुत लोग पढ़ाते बहुत अच्छे समझदार है बड़े बड़े समझदार व्यक्ति यहां है ना नाम तो उनको याद नहीं बड़े अच्छे समझदार पढ़े हुए पढ़ाते हैं लोग उनके पास बहुत कभी होते हैं। इसी में शास्त्र में आया ऐसे बड़े बड़े ऋषि लोग भी मिल करके विचार करते थे, अरे विचार आवश्यक करना ही चाहिए। निधिध्यास में आया तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधा। तत्चिंतनम परब्रह्म का चिंतनम और तत्कथनम भिन्न भिन्न अन्य अलग संसार की बात करते उसके भया परमात्मा के ऊपर बात करे तो अच्छा है और अन्योन्यम तत्प्रबोधनम परस्पर उसको बताना परस्पर प्रश्न उत्तर करेगी। एक महापुरुष थे ऋषि के समय बहुत ही विरक्त थे। कोई उनके पास आने पर उनका मुख्य ही है वो शास्त्र के विषय में विचार करना। ऐसे कोई आने पर कहे ना पानी देंगे शरबत देंगे चाह देंगे ये प्रश्न वो आएंगे बैठेंगे बोलते तो महाराज जी हमारे को ये संशय है ये शास्त्र ये थोड़ा पंक्ति हमको नहीं लगती इसको थोड़ा बताइए नहीं तो पूछेंगे। वहां इसे कहा गया चाक्षुष पुरुष दिखता है। कहां चाक्षुष पुरुष दिखता क्या है जैसे पाठ जैसे अभी आए ना ऐसे कहेंगे पाठ में आए चाक्षुष पुरुष दिखता है और उसको इस आदित्य पुरुष एक कहा ये कैसे हो सकता है। पूछने के बाद बड़े नम्रता से पूछेंगे उसे जानते थे कुछ बोलेंगे फिर कुछ बोलने के बाद इतने सज्जन है इतने निराभिमानी है किसी को भी वो पूछेंगे और उसके बाद वो बोलने के हाँ हाँ आपने कहा अभी हमको स्मरण हो गया ये कहेंगे जानते हैं बोले हाँ गुरु जी ने हम बताया था आपने कहा ठीक करके बोले ये जो चाक्षुष पुरुष है ये तो उपाधि को लेकर भिन्न हुआ वो तो अलग है वास्तु तो एक है दोनों उपासना ऐसे करके फिर विचारों ही करेंगे। ये आप कहीं पढ़ेंगे तो अखंडानंद जी स्वामी जी उनके पास गए थे। इनका नाम स्वामी ब्रह्म प्रकाश जी महाराज कोलासा से पास में थे उत्तर काशी में अखंडानंद जी गए थे। कहीं बैठकर भक्त सामने कुछ बोल रहे थे ब्रह्म प्रकाश जी आकर के जैसे बैठे ऐसे कहीं नीचे प्रणाम कर बैठ गए। जब बैठ गए कोई आकर के अखंडानंद जी को कहा स्वामी जी ये ब्रह्म प्रकाश जी तो वो ब्रह्म प्रकाश जी का नाम तो सुना था बहुत पुरानी बात नहीं आश्रम के पास में उनके भक्त अभी जो उनकी सेवा करते थे भक्त और भक्त अभी हमारे पास आते हैं अभी कुछ साल पहले गए तो ब्रह्म प्रकाश जी फिर उठकर जा करके उनको प्रणाम कर उठाकर ला करके वो नहीं उठते ला करके अपने आसन पर बैठाए। फिर दूसरे दिन अखंडानंद स्वामी जी प्रहलाद लेकर उनके पास गए थे। इतने विरत बहुत विरत थे उनके कुटिया में जब तक थे बिजली लगाने के लिए कोई बाद में कहा वो मना किया बिजली नहीं चाहिए बहुत विरत थे। ऐसे तो ही उनका था कोई आने पर ये बात शास्त्र चिंतन करना है कुछ प्रश्न कुछ उत्तर अन्योन्यम तत्प्रबोधन प्रश्न पूछेंगे कुछ बोलेंगे ये बोलेंगे किसी प्रकार। अच्छा पूछने पर उनको ऐसा नहीं लगेगा कि हमको नहीं आता है बिजीती होगी अथवा वो बताते हैं ऐसा भी नहीं लगेगा क्योंकि उनको सम्मान से पूछेंगे फिर कहा आपने याद दिला बड़ी कृपा की हमारी याद आ गया कहेंगे वही किंतु किसी प्रकार विचार शास्त्र का विचार ही करना है और कुछ नहीं। इसलिए परस्पर अन्योन्यम तत्प्रबोधनम ए तदेक परत्वंच निरंतर उसमें स्थित है इसका नाम ब्रह्माभ्यास। निधिध्यासन करने के लिए खाली आसन लाकर बैठ करके स्थिर हो जाए आंख बंद करके कमरा बंद करके धूप दे इतने मात्र नहीं है किंतु चिंतन निरंतर होना चाहिए। ये ब्रह्म प्रकाश जी के कोई जीवन पुस्तक में मैं पढ़ा था ये हमारे पास पुस्तक अखंडानंद जी के पुस्तक में कहीं हुआ नहीं मुझे मालूम नहीं सत्य घटना है। उत्तरकाशी में ब्रह्म प्रकाशी में आते पहले महापुरुष में ऐसे था अभिमान का अभाव निराभिमान कोई कई महापुरुष है तो उनके पास जाएंगे। ब्रह्म प्रकाश जी का ऐसा भी था चलते हैं कोई महात्मा कहेंगे चलो उनके दर्शन कर लेंगे चलते समय भक्त लोग कहेंगे बोले ये बार महाराज जी कितने बड़े वो तो साधारण महात्मा बैठे कहे महाराज जी होता है इसे सामान्य बैठे अरे कोई नहीं महात्मा बैठे तपस्या करे थोड़ा दर्शन तो कर लें। कभी चलते समय वहां जाना था वो लोगों नहीं बताए आगे चल गए फिर पूछा ये बाबा एक महात्मा वहां कहा है ना महाराज जी होता तो रास्ता छूट गया चला गया कितने दूर नहीं चलो चलते क्या होता है वापस आकर के उनके पास जाएंगे जाकर प्रणाम करेंगे पूछेंगे बैठेंगे कोई महात्मा है तो तपस्या करे तो उनके पास जाना चाहिए उनका ऐसा नियम तो इसे परस्पर मिलकर के विचार करना की आवश्यकता है। ये श्रुति में देखो है त्रयो हो उद्गीते कुशला बभुवो शिलक शालावत्यसैकितायनो दालभ्य प्रवाहन जैविली ते हो चुरुद्गीते वै कुशला स्मो हंत उद्गीते कथां वदाम इति त्रय तीन उद्गीत के विषय में कुशला बहु कुशल हुए थे किस समय जैसे इस समय कोई प्रसिद्ध है संगीत में, शास्त्र में हो, किस में अभी प्रसिद्ध है, हमेशा ही वही है, ऐसा नहीं। किसम कोई होते, पहले कभी कुशल कोई थे वो चले गए, अभी कोई कुशल है ये फिर चल जाइए, आगे कोई होंगे। ऐसे सब में, संगीत बोलने में, खेलने में, शास्त्र में, किसी विषय में किसम कोई उत्कृष्ट, तो कुछ समय में तीन कुशल थे, तीन उद्गीत विषय में। एक का नाम शिलक और उनको शालावत कहते, उनके पिता के नाम था शिलावत, शलावत, शलावत का पुत्र उनसे शालावत्य हो गया, पिता का नाम था शलावत, नाम है शिलक। दूसरा है चैकितायन दालभ्य, दलभ नाम कह के थे उनके गोत्रा पुत्र है, और चिकितायन का पुत्र उनसे चैकितायन हुआ, द्वितीय हुए, और तृतीय होते प्रवाहन उनका नाम, जीवल के पुत्र से जयबिली नाम पड़ गया, जीवल का पुत्र जयबिली, तो तीन हो गए, शिलक, दालभ्य और प्रवाहन, तीन ही दो दो नाम दिया, शिलक सालावत एक है, चैकितायन दालभ्य एक है, प्रवाहन जयबिली एक है, नाम तय के और एक पिताजी के अनुसार नाम पड़ जाता है। अभी भी कोई के नाम में पिताजी का नाम, पिताजी का कुछ मिलाकर कहते, तो प्रवाहन थे जयबिली। तेह उचितो मिलकर के विचार किया, उद्गीत वे कुशलास्म, हम लोग को उद्गीत के विषय में जान बड़े कुशल है, विचार करते निपुण है, ये लोक में प्रसिद्ध, सब लोग हमको मानते, हम बड़े प्रसिद्ध उद्गीत में कुशल, तीनों परस्पर कहते हम कुशल है, लोग में प्रसिद्ध है, सब लोग कहते कि तीनों बड़ा अच्छे जानने वाले है, ऐसा लोक में हम तो प्रसिद्ध है, जब प्रसिद्ध है तो क्या करना है, लोक में प्रसिद्ध है लोग अच्छा कहा तो झगड़ा करने के नहीं, तो क्या करते हैं, हम तो उद्गीत कथा बदाम, अभी उद्गीत विषय में थोड़ा विचार करेंगे, विचार करने से क्या लाभ होगा, विचार कैसे करेंगे, पक्ष प्रतिपक्ष का समाधान करने के लिए कोई प्रश्न पूछेगा, कोई उत्तर देगा, उसमें क्या कमती ज्यादा दूसरे बताएगा, फिर ये प्रश्न पूछेगा उत्तर दे, ऐसे प्रश्न उत्तर करे, ऐसे जो करते हैं इसका नाम है वाद कथा। एक कथा है वाद कथा, तत्व जिज्ञासु की कथा, तत्व निर्णय के उद्देश्य से, ये उद्देश्य नहीं हो जाता है कि उसको मैं हरा दूं या मैं जीत लूं, हारना जीतना नहीं, विचार करना, प्रश्न उत्तर होगा, गुरु शिष्य की जो कथा शास्त्र में जो आया ये सब वाद कथा में आता है, शिष्य प्रश्न करेगा गुरु उत्तर देंगे, कभी गुरु भी पूछते हैं शिष्य किसे बोलो कुछ गलत होता है तो बताते, ये वाद कथा, परस्पर शिष्यों का भी प्रश्न उत्तर होता है वाद कथा, सब जानते सब मिलकर थोड़ा इसके विचार करेंगे, विचार करके वो उससे ज्ञान वृद्धि होती, संशय की निवृत्ति होती, किसका कोई संशय है तो कहीं कुछ भ्रांति है तो भ्रांति निवृत्ति होती, कभी कभी इसे हो जाता है, पहले मालूम था जानता था अभी विस्मरण हो गया, फिर विचार करेंगे तो ज्ञान दृढ़ होता है, इसलिए ये वाद कथा करनी चाहिए, विपरीत भ्रांति की निवृत्ति, अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति और संशय की निवृत्ति, भगवान भाष्यकार कहते विपरीत का नाश, अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति, संशय निवृत्ति, इसलिए विद्वान का संबंध इसे करके विचार करना चाहिए, इसे शास्त्र श्रवण करने वाले भी मिल करके जितने सामर्थ्य थोड़े थोड़े विचार करे, जो सुना श्रवण क्या विचार करके थोड़ा तैयार करे, आज कोई तैयार करके आए क्या उद्गीत उपासना बताने के लिए क्या काल जो बताया था किस किस पर्याय में कैसे उपासना करना मालूम है, बता सकते, पुस्तक क्यों देखती, हम जो पूछते उधर दिखती हाँ भी कहते उधर दिखती तो ये परस्पर विचार करने से ज्ञान वृद्धि होती, तो बड़े बड़े मिलकर के कथा बदाम, ये कथा बाद कथा, और एक होता है जल्प कथा, जल्प कथा में तो दूसरे को परास्त करना, जितना शास्त्रार्थ कितने विद्वान परस्पर प्रश्न पूछो उत्तर दे, कोई हार जाएगा कोई जीत लेगा, ये अभिप्राय, अब दूसरे को खंडन करके अपने पक्ष रखना, दूसरे को परास्त करना, जीत लेना, जैसे भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र को हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, जो हार जाएगा उसी से बनेगा, तो मंडन मिश्र बहुत बड़े विद्वान थे, मीमांसक थे, और ये गए थे उसको परास्त करेंगे, हमारा शिष्य बनेगा तो हमारे बादशाह पर बात का लिखेगा, कुमार लोटन को भेजा था उनके पास गए थे, तो शास्त्रार्थ हुआ, साक्षात होने में मध्यस्थ एक होना चाहिए, नहीं तो आपस में झगड़ा हो जाएगा, किसको नहीं मानेगी। तो मध्यस्थ कौन होगा? तो मंडन मिश्र की पत्नी भारती उनको मध्यस्थ बना गया। तो कितने साक्षात करते समय कितने निश्चित है कि इसमें मध्यस्थ बनेगी अपनी पत्नी। धर्म के ऊपर जो विचार करते हैं, पत्नी भी पति को पक्षपात कर नहीं करेगी, निर्णय करेगी, करके उसको बना गया आचार्य भगवत में बना, ठीक है। और वो भी कार्य व्यस्त होने से इतने पहले नौकर जाकर रखकर नहीं, सब अपने करना पड़ता। अतिथि कोई आए खिलाना भोजन बनाना है तो बड़े बड़े लोग इस टाइम करते थे, अभी भी आपको मालूम है बड़े बड़े लोग करते थे। तो कार्य व्यस्त रहते दिन के साथ रात चले आ रहा, कितने दिन तक पता नहीं, वो कहां बैठी कर सुनने की निर्णय करने के लिए दोनों गले में माला चढ़ा दी। जिसके माला सूख जाएगा वो मैं सूख जाएगी, वो हार गया, वो अपने काम करती। रोज बुलाती, आई आप आई महाराज आप भिक्षा के रहे, और पति बोलते आप आओ भोजन के लिए। दोनों को क्या बुलाती? पति को बुलाती अभी भोजन के लिए आप आओ, और इनको बोलते महाराज आप भिक्षा के लाए। सन्यासी लोग भिक्षा करते हैं, उनको नहीं कहते भोजन। अपने भी आश्रम में घंटे होते, वो कब पूछेंगे भिक्षा कितने बजे? भोजन करते तो हम इसको भिक्षा शब्द से ही कहते, कहीं भी भिक्षा तो है, साक्षात कोई देता है किसी प्रकार का भिक्षा तो हमारे पास, भोजन भिक्षा ही। इसे सन्यासी महात्मा को कहते भिक्षा की कितने बजे यहां भिक्षा होती, भोजन कितने बजे नहीं, कितने बजे भिक्षा। तो उनको बुलाते आये भिक्षा के लिए, और पति को बुलाते आये खाने के लिए। शास्त्रार्थ पर जब जीत गए आचार्य भगवत पाद, मंडन मिश्र हार गए। अभी क्या हार जाने से क्या होंगे? उनके शिष्य बन गए, सन्यासी बन गए। अभी देवी बुलाती है, अभी दोनों आये भिक्षा के लिए। अर्थात दोनों सभा बाबा नहीं है, पति को भी कह दिया अभी दोनों भिक्षा के लिए आये। अर्थात स्वीकार कर लिया, ये हार गए तो शिष्य बन गए तो बाबा बन जाएंगे। वो शास्त्रार्थ था, जल्प कथा। और एक कथा है वित्तंडा कथा। वित्तंडा कथा अपना कोई मत नहीं, कोई कुछ कहता है उसका खंडन करना, कुछ कहता तो खंडन करना, अपने कुछ हमारा कोई मत नहीं, जो कहता है उसमें खंडन करना, वो वित्तंडा कथा कहते हैं। तो जो मुमुक्षु है उसके लिए ये तर्प जल्प कथा वित्तंडा कथा करनी नहीं चाहिए, वाद कथा करनी चाहिए। तो तीनों मिलकर का भी वाद विचार करेंगे। तथेतिह समुपविविशो सह प्रवाहनुजैविरुवाच भगवन्तावग्रे वदताम् ब्राह्मणैर्वदत्वर्वाचं श्रोष्यामीति। तीनों हम कहती बहुत अच्छा है, बैठो बैठ के विचार करके अच्छा है। सब प्रवाहल जैविली जो था जीवल का पुत्र प्रवाहल प्रवाहन कहा भगवन्तो अग्रे वदताम्, हाय भगवान हे आप दोनों पूज्य है, पहले आप दोनों बोलिए, आप दोनों परस्पर बोलिए। और ब्राह्मणोर वदतोर वाचम श्रोष्याम, आप दोनों ब्राह्मण है, आप दोनों बोलिए, आप दोनों बोलते समय दोनों के शब्द में सुनूंगा। आप दोनों ब्राह्मण आप बोलो मैं सुनूंगा, इसे कहने का अभिप्राय स्वयं जैविली ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे, राजा थे। नहीं तो ये यदि ब्राह्मण है, तीनों ब्राह्मण है, तो कहेंगे आप दोनों ब्राह्मण, आप कहो दोनों की मैं सुनूंगा। ब्राह्मण तो तुम हो, तुम दोनों ब्राह्मण है, आप दोनों ब्राह्मण, आप दोनों कहो मैं सुनूंगा, अर्थात स्वयं ब्राह्मण नहीं थे। तो आप दोनों ब्राह्मण है, आप दोनों प्रश्न उत्तर कीजिए, मैं सुनूंगा। भगवान बदता ब्राह्मण वदतर वाचम सोच्यामी, और इस कहते आपके शब्दों के मैं सुनूंगा, आप दोनों बोलो, आप दोनों के शब्दों के मैं सुनूंगा। शब्द को सुनूंगा कहने का अभिप्राय क्या है? अर्थ विशेष नहीं है, विशेष अर्थ नहीं, शब्द को मैं सुनूंगा, अर्थात विशेषता इनको अधिकार है, बाद में पता चलेगा। आप दोनों बोलो अर्थ को है या नहीं हो, दोनों का कैसे आप विचार करते मैं सुनूंगा, ऐसे होता है। अच्छा तुम बताओ क्या जानते हो, पहले जो बोलते थे गलती बोलता है तो पहले सुन लो, और कुछ गलत बोला तुरंत गलती कहेंगे तो आगे उसकी सुनेंगे किसी, इसे सुनने के लिए कहे तुम क्या जानते हो बोलो, वो पूरा बोल दिया। बोलने के बाद फिर उसको पहले से बताएं क्या तुम्हारी गलती है, कहते आप दोनों पहले प्रश्न उत्तर करो। ये नहीं होता है कि तीनों परस्पर ये कुछ कहेगा, ये कुछ कहेगा, ये कुछ कहेगा, ऐसा नहीं, प्रश्न उत्तर दोनों में हो, फिर दोनों में होने के बाद कहें निर्णय नहीं हुआ कुछ रह गया फिर तीसरा कहेंगे। तो एक नियम से नीति मर्यादा से ही बात होती है, नहीं कि तर्क वितर्क झगड़ा, ऐसा नहीं। परस्पर कहेंगे निर्णय करना है, तत्व बुभुस तत्व निर्णय करने के लिए कथा है, तो क्या आप दोनों विचार कीजिए, तो कहने के बाद पहले वो शिलक पहले प्रश्न करने लगा। स शिलक शालावत्यशिकितायनम दालभ्यम उवाच हंतत्वा पृछानीति पृछेति उवाच। और शास्त्र में मर्यादा है, या तो कहीं से विद्या प्राप्त करना है तो शिष्यत्व में जाकर के ग्रहण करना है, और शास्त्रार्थ होना है तो आगे आएगा वृद्धारण्य के में। शास्त्रार्थ में अपने को आना है, आता है तो दूसरे को पूछना, कहीं के अपने को मालूम नहीं दूसरे को पूछे तुम क्या पढ़ते हो इसका अर्थ बताओ, वो नहीं बता पाएगा। बोला क्या पढ़ते हो तुम, भाई बोला हमको थोड़ा बता दीजिए, है इसे थोड़ी बताते, हमको नहीं आता है ये, नहीं बोले हमको नहीं आता है, बोले क्या पढ़ते हो, नहीं अरे क्या पढ़ते हो, फिर वो कहेगा थोड़ा हमको बताए, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी बताते, ऐसे कदम नहीं बताएंगे। कारण क्या है, दूसरे को खाली विजित करने के लिए ऐसे करते हैं। काशी में ऐसे कोई कोई पढ़ करके शास्त्री आचार्य तक पहुंच गए, आता कुछ नहीं, और थोड़े कुछ पढ़े लघु पढ़ने वाले पूछेंगे उसमें उकाल अध्यक्ष दीर्घ पड़ता है अच क्यों कहा गया बोलो, वो तो कुछ मालूम नहीं कहाँ अच उसको दिखता नहीं अच कहा है, उकाल अध्यक्ष में अच वहां है ये भी उसको पता नहीं, आज क्यों कहा गया वो क्या पता चलेगा, क्या पढ़ते हो, फिर बेचारा सोचेगा हमको नहीं आता है, तो बहुत आता है, ऐसा नहीं होता है। यदि कुछ पूछते हैं तुमको मालूम हो और नहीं बता पाए तो उस पूछता है तो बताओ, तभी आगे आएगा। शास्त्रार्थ में कुछ पूछता है नहीं जानता है आगे मुझे बोलता तुम इसका उत्तर दो, नहीं बोल पाते सही गिरी ऐसे विरोधारण्य में। तो यहां भी पूछने के लिए नियम में आपसे पूछूं, बाद कथा होने पर ही मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, अरे आपस में मैं थोड़ा कुछ पूछू, तो कहते सहशिलक शालावत्य स्वेकितायन को बोला हम तो आप पूछानी थी मैं आपसे पूछू, तो दोनों बात करेंगे तो मैं पूछू तो वो क्या हो पूछे ही थे बाजो पूछो डालभ्य ने क्या पूछो। अभी कौन प्रश्न करेगा, शिलक प्रश्न करेगा डालभ्य से, का सामनो गति रीति स्वर इति हो वाच, स्वर से कागति रीति प्राण इति होवाच, प्राण से कागति रीति अन्नमिति होवाच, अन्न से कागति रीति आप इति होवाच। ये शाम की गति क्या है, शाम शब्द से उद्गित है ना, शाम का अवयव उद्गित, इसे एक देश उद्गित है कि अवयव ओंकार को उद्गित कहा गया, पट के अवयव जल गया तो कहते पट जल गया, यहां भी शाम के अवयव उद्गित उसको भी शाम शब्द से कहा, पट का अवयव जल गया तो कहे पट जल गया, शाम के अवयव जो उद्गित वो भी शाम है पांच भागे, तो यहां शाम शब्द से उद्गित कहा, उद्गित यहां उपास्य है, इसे उद्गित शाम की क्या गति है, कहां गति का आश्रय कहां आश्रित है, उसका आश्रय कौन है, ये प्रश्न हेतु होवाच, ये उत्तर दिया स्वरित होवाच, कहे स्वर ही उसकी गति है, स्वर में आश्रित है, क्योंकि स्वरात्मक स्वर बोलना होता है, स्वरात्मक शाम तो स्वर उसका आश्रय परायण गति है। फिर कहा स्वर से क्या गति रीति, फिर शिला को पूछते स्वर की क्या गति है, क्या परायण है, क्या आश्रय, तो अल्भ उत्तर देते प्राण ही तो हुआ सर, प्राण से ही ज्ञान किया जाता है, तो प्राण उसका आश्रय, प्राण से क्या गति रीति, तो प्राण की क्या गति, प्राण का क्या आश्रय, तो उत्तर देते दाल भी उत्तर देता अन्न मित होवाच, अन्न में आश्रित है, तो फिर श्रीलक पूछता अन्न से क्या गति रीति, अन्न का आश्रय क्या है, ये कहते आप ही तो होवाच, अन्न का हो गया प्राण का आश्रय का अन्न, क्योंकि अन्न नहीं होगा तो प्राण चले जाएगा, और अन्न उसका बंधन कर, अन्न की गति हो गया जल, क्योंकि जल से अन्न उत्पन्न होता है, जल से रस भर करके अन्न होता है, और जल उसका कारण है, इसे जल हुआ। आगे फिर शिलक पूछता है अपांग कागत रीति असौ लोक होवाच, अमुष्य लोक से कागत रीति न स्वर्गम लोकम अति नये रीति होवाच, स्वर्गम वयम लोकम सामा भी संस्थापयाम, स्वर्ग संस्थापम ही सामेति। अपांग कागत रीति शिलक पूछता है जल की क्या गति है, क्या आश्रय है, तो दालभ्यो कहते असौ लोक ही होवाच, वो स्वर्ग लोक जल वर्ष वृष्टि होती ऊपर से आता है जल, वो लोक असौ लोक इति उवाच। फिर से लघु बता अमुष्य लोगों से क्या गति और स्वर्ग लोगों का क्या आश्रय है। स्वर्गलोक तो जल का आश्रय उठाया किंतु उसका क्या आश्रय है क्या गति रीति। इतने कहने के बाद दालिबे कहता है न स्वर्गम लोकम अति नएद। स्वर्ग लोगों का आश्रय क्या पूछते हो, स्वर्ग तो सबका आश्रय हो गया, स्वर्ग लोग से बढ़कर के आगे कुछ नहीं पूछो। कोई भी स्वर्ग को अतिक्रम करके दूसरा आश्रय का चिंतन नहीं करे, इसका तो स्वाश्रय हो गया, जल का आश्रय स्वर्ग हो गया। स्वर्ग को अतिक्रम करके स्वर्ग लोग को अतिक्रम करके दूसरा कोई आश्रय है शाम का, दूसरा कोई ऐसे चिंतन नहीं करे, कोई है नहीं। स्वर्गम वयम लोकम शाम अभि संस्थापयम। स्वर्ग लोक हम शाम शब्द से कहते, शाम से प्रारंभ हुआ, शाम का आश्रय स्वर, स्वर का आश्रय प्राण, प्राण का आश्रय अन्न, अन्न का हो गया जल, जल का आश्रय हो गया स्वर्ग, और स्वर्ग का क्या आश्रय बना परंपरा से शाम का आश्रय स्वर्ग है। हम स्वर्ग को ही शाम शब्द से कह करके उसकी स्तुति करते हैं, स्वर्ग ही शाम का आश्रय का आश्रय प्राण है पराशय। स्वर्ग संस्थापन ही शाम इति, क्योंकि शाम को स्वर्ग कह करके स्तुति करते हैं। स्वर्ग ही सबका आश्रय, शाम का अत्यंत सबसे आश्रय कौन हुआ, स्वर्ग। एक आश्रय का दूसरा तीसरा होकर के अंत में स्वर्ग में, स्वर्ग में सब आश्रित है, स्वर्ग का क्या आश्रय पूछना। तंग शिलक शालावत्यश्चैकितायन दाल्भ्य मुवाच प्रतिष्ठित वे किलते दाल्भ्य शाम यस्तेतरे ब्रूया मूर्धाते विपतिशती मूर्धाते विपते दिति। अभी तो शिलक प्रश्न कर रहा था चैकितायन, अभी तंग शिलक शालावत्य चैकितायन शिलक शालावत्य प्रश्न कर रहा था। अभी चैकितायन दाल्भ्य से कहा चैकितायन दाल्भ्य मुवाच अप्रतिष्ठित वे किलते दाल्भ्य शाम हे दाल्भ्य तुम्हारे शाम अप्रतिष्ठित उसकी अंतिम प्रतिष्ठा तुमको मालूम नहीं। एक एक प्रतिष्ठा कहकर बीच में छोड़ दिया उसका उसकी प्रतिष्ठा तुमको मालूम नहीं। उस स्वर्ग का आश्रय तुम नहीं जानते हो, शाम का आश्रय कहकर स्वर प्राण अन्न आदि कहकर के स्वर्ग तक आया, स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं कह दो तो तुम्हारे शाम प्रतिष्ठित नहीं है। स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं जानते तो अप्रतिष्ठा हो गया। ऊपर ऊपर से लेकर के अंत में प्रतिष्ठा तो कोई होना चाहिए, अरे बीच में छोड़ दिया उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं, उसकी प्रतिष्ठा है ते तो तुम्हारे शाम अप्रतिष्ठा का, तो तुम शाम की वास्तव प्रतिष्ठा को नहीं जानते हो। अप्रतिष्ठित तुम्हारा शाम है ये दाल्भ्य से कहा। यस्तु एतर ही ब्रूयात इस समय तुम शाम के विषय में उद्गान करते, उद्गात आदि ये जानते हैं, सब लोग हमको निपुण कहते हैं, किंतु तुम शाम की प्रतिष्ठा नहीं जानते हो, तुम्हारी भ्रांति है। अभी तक तुमको इतने मालूम नहीं, स्वर्ग तक पहुंचा स्वर्ग की प्रतिष्ठा नहीं जानते हो। यदि इस समय कोई सहन नहीं करके तुमको असही सुनोगे कोई कहे, क्योंकि तुम ये अपराधी दोष है, दोषी है, स्वर्ग को प्रतिष्ठा कर तो वास्तव स्वर्ग प्रतिष्ठा नहीं, स्वर्ग की भी प्रतिष्ठा है, स्वर्ग का भी आश्रय है, तुम नहीं जानकर वहां तक मानते हो तो ठीक नहीं जानते हो। कोई यदि सही सुनाई कर तुम बोले तुझे मूर्धाते विपत्ति से आती थी, मूर्धाते विपत्ति दी थी तुम्हारा सिर गिर जाएगा, ऐसा भी कोई कहेगा तुम्हारा सिर गिर जाएगा। अर्थात मैं नहीं कहता हूं, इधर भाई नहीं करो, मैं नहीं कहता तुम्हारा सिर गिर जाए, किंतु इसी दोष में कोई यदि कोई कहे तुम्हारा मूर्धा गिर जाएगा तो तुम्हारा मूर्धा गिर जाता, सिर गिर जाता। अर्थात तुम जानना चाहिए ये तो सिर गिर जाने का है, क्या नहीं जानते कोई कहेगा, तुम नहीं जानते भ्रांत है, सब सभा के बीच अपमानित हो जाते सिर झुक जाता है, और सत्य संकल्प होने से कभी गिर जाता है नष्ट हो जाता है। अभी जब दोनों का विचार चल रहा था, दोनों विचार में एक कहने के बाद दूसरा प्रश्न जो कर रहा था ये कहता ठीक नहीं जानते, तो तुरंत दाल्भ्य कहता है हंता हम एतद् भगवतो वेदानीति विधित होवाच अमुष्य लोक से कागत रीति लोक होवाच अस्य लोक से कागत रीति न प्रतिष्ठाम लोकम अतिनय दीति हो वाच प्रतिष्ठा वयम लोकम साम आभि संस्थापयाम प्रतिष्ठा संस्थाप ही सामेति। और दाल्भ्य पूछा, दाल्भ्य किसे पूछेगा? शीलक से। किसे? शीलक से पूछता है, हंत इरानी अहम एतद भगवत वेदानी। इसको मैं आपसे भगवत का तो पूज्य आपसे मैं जानना चाहता हूं, मुझे बताइए। प्रश्न करते आप मुझे बताई थी, कहते विधि तो होगा सर, ठीक है समझ लो पूछो। फिर ये पूछते हैं दाल्भ्य, अमुष्य लोक से क्या गति? तो स्वर्ग लोक की क्या गति है, स्वर्ग का आश्रय क्या है? देखो तो अयम लोक इति हुआ, ये लोक है, इस लोक, इस लोक में योग याग करते हैं, दान करते होम करते, तो स्वर्ग लोक में स्थित उनको पोषण करते हैं। स्वर्ग में जो देवता लोक है उनको ये लोक में ही पोषण करते है, ये आश्रय। इसी लोक में याग दान होमादि करेंगे तो उस लोक को पोषण करते है। अतः प्रधानम देवा उपजीवंती, यहाँ जो देते देवता लोग उसको आश्रय करते हैं, और यहाँ जो कर्म करेगा वो स्वर्ग में जाता है। खाली स्वर्ग इसे अपने आप थोड़ी ही बैठा, सत्कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएगा, और जो कर्म करते देवताओं को देता है, जिया लोग उसकी गति है। अमुष्य लोगों से अयम लोक इति हुआ से। फिर दावी पे पूछा, अश्य लोगों से क्या गति रही थी? फिर इस लोगों का क्या आश्रय, स्वर्ग से ये लोग, इस लोग का क्या आश्रय? इसे पूछने पर शिलक कहता है, कहता है न प्रतिष्ठा लोकम अति नये, ये तो प्रतिष्ठा है पृथ्वी, इसको अतिक्रम करके दूसरे कोई लोक प्रतिष्ठा नहीं, सोचो ये लोक प्रतिष्ठित है, इसका क्या आश्रय पूछना? ये नहीं होगा चल, प्रतिष्ठा वयम लोकम साम अभि संस्थापयाम, यही पृथ्वी प्रतिष्ठा है, यही लोक है, इसको साम की प्रतिष्ठा में कहते, ये अभि संस्था संस्था पृथ्वी में स्थित है, ये सारा पृथ्वी, पृथ्वी सारे पृथ्वी में सब कुछ है, सब लोकेश में प्रतिष्ठा है, यही प्रतिष्ठा है, साम की भी यही प्रतिष्ठा है, उसके और प्रतिष्ठा नहीं पूछ रहा, इसकी हम स्तुति करते। यम वे रथंतरम, ये पृथ्वी रथंतर है, यही सब की प्रतिष्ठा है। सवाच वयम लोकम सामेति, इतने कहने पर जो पहले पूछा था प्रवाहन, दोनों को कहा था तुम ब्राह्मण दोनों परस्पर करो, पहले तो शीलक ने पूछा, दाल्भ्य उत्तर दिया था, फिर दाल्भ्य उनके पूछा, शीलक थोड़ा अधिक तो जानता था दाल्भ्य से, किन्तु यहां तक वो पहुंच गया, पृथ्वी सब की प्रतिष्ठा है। इतने कहने के बाद जो क्षत्रिय राजा था प्रवाहन, तंग प्रवाहनो जैविरुवाच अंतवद्वी किलते शालावत्य साम यस्तेतर ही ब्रूयान मूर्धाते विपतिशती, मूर्धाते विपते दीति, अंताहम एतद् भगवतो वेदानीति विद्धित होवाच। प्रवाहन जैविली कहा, अंतवद्वी किलते शालावत्य साम, हे शालावत्य आपका जो साम अंतवत अंत वाला विनाशी है, उसकी प्रतिष्ठा तुम नहीं जानते हो, शीलक शालावत्य शालावत्य शीलक, हे शालावत्य शीलक तुम्हारे साम अंत वाले विनाशी हो जाएगा, क्योंकि उसको इसकी प्रतिष्ठा नहीं जानते हो। यस्तु इतरी ब्रूयात मूर्धाते विपतिष्ठति, यदि कोई तुम्हारे भ्रांति को देख करके असहिष्णु होकर के ऐसे बोल दे तुम्हारा सिर गिर जाए, तो तुम्हारा सिर गिर जाता, मूर्धाते विपते थी। ये अर्थात मैं नहीं कहता हूं, किन्तु कहने पर यह शंका करते हैं, कोई कहे अथवा नहीं कहे, अग्नि को स्पर्श कर से अग्नि जला देती है, कोई कहेगा तो जलाएगी, नहीं तो नहीं जलाएगी। यदि दोष किया, दोष के कारण तो दोष है, तो अपने आप सिर गिर जाना चाहिए, कोई कहेगा तो सिर गिर जाए तो गिरेगा, नहीं तो नहीं गिराएगी, क्यों? तो कहते सब दोष होने पर भी कुछ निमित्त भी है, यहां ऐसा श्रुति में कहा गया, अज्ञान भी हो उसके बाद जानने वाला कोई उसके अज्ञान को समझ करके, तुम नहीं जाने करके भ्रांत हो, जानने वाला यदि कहे तो सिर गिरेगा, इन्हें कि खाली भ्रांति मात्र से सिर गिर, सिर गिरने का निमित्त केवल भ्रांति नहीं, भ्रांति हो और जानने वाला उसको कहे कि तुम्हारी भ्रांति, ऐसा कहे असहिष्णु होकर कहे, असहिष्णु कब कहेगा, यदि शिष्यत्व में उपस्थित नहीं है, तर्कादि करता है, ये कहेगा तुम गलत कह दो, सिर गिर जाएगा, तब गिरेगा। खाली भ्रांति बातें से नहीं, तो निमित्त जैसे अग्नि स्पर्श से गर्म लगता है, यहां केवल इतने से नहीं, भ्रांति हो को सही स्मरण कर कहे तभी होता है, तो ये निमित्त सापेक्ष है। अब फिर प्रवाह जयमिनी से शालावत्य शिलक ने कहा, मैं आपसे सुनना चाहता हूं भगवत वेदानी थी, कहते विधि उपाचे ठीक समझ लो। अभी प्रश्न करता है शिलक शालावत्य, जो पहले प्रश्न किया था दालिव्य से, फिर दालिव्य उसको पूछा तो चुप हो गया, उसको नहीं, वो दालिव्य को चुप करके टाइम दिया, फिर अपने उसको चुप करके जब रहा, प्रवाह ने कहा ठीक नहीं, अभी अस्य लोक ये प्रवाह जयवीर से पूछ रहा है शालावत्य, अस्य लोक से कागत रीति आकाश इति होवाच सर्वाणी भू इमानी भूतान्य आकाशादेव समुत्पद्यंत आकाशम प्रत्यस्तं यन्ति आकाशो हे वेभ्यो जायान आकाश परायणम। तो अनुमति लेकर के मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा विद्धि जानो ग्रहण करो। तो पूछा अस्य लोक से कागत रीति, ये स्वर्ग का तो ये लोक आश्रय हो गया थी, इस लोक फिर क्या गति है, कहा क्या आश्रय है। तो जैविनी कहता है, प्रवाहल कहता है आकाश ही थे, बस आकाश इसका आश्रय है, क्यों सर्वानी हवा इमानी भूतानी आकाशादे वो समुत्पद, ये सारे भूत भौतिक प्रपंच आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाशम प्रति अस्तंगयन्ति आगे लीन आकाश में लीन हो जाते हैं, आकाशो ही एव एभ्यो जायान सारे भूत से आकाश उत्कृष्ट है, जायान सबसे बड़ा है महत्तरम, आकाश परायणम सबका सबकी प्रतिष्ठा, तीनों काल में आकाश ही प्रतिष्ठा है। श्रुति में विभिन्न स्थानों में विभिन्न शब्द प्रयोग किया गया, किस शब्द का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, श्रुति तात्पर्य निर्णय करने के लिए जहां संभव नहीं होता है, व्यास जी ने मीमांसा दर्शन उत्तर मीमांसा दर्शन जिसको कहते ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्र में इसी किसी की स्थल पर सूत्र बना करके इसका स्पष्टीकरण किया, इसी के ऊपर ब्रह्मसूत्र में आया विचार, अंत में आकाश ही सबका सबकी प्रतिष्ठा, क्योंकि आकाश से ही सारे भूत की उत्पत्ति, आकाश देव इमानी भूतानी, इमानी भूतानी कह रहे सारे भूत आकाश से उत्पन्न हुए, सारे भूत के अंदर आकाश है या नहीं, आकाश के साथ सारे भूत आकाश से उत्पन्न होंगे हो सकता है, आकाश के साथ सारे भूत भौतिक प्रपंच आकाश से ही उत्पन्न हुए, आकाश में स्थित हो गया आकाश है, ये सारे भूत तो उत्पन्न हुए आकाश से, आकाश भी पांच भूत आ गए आ गया, फिर पांच भूत में आकाश आ गया, इन सबकी उत्पत्ति आकाश से कैसे होगी, इसलिए आकाश शब्द का अर्थ ये भूत आकाश नहीं है, यहां सर्वत नहीं, यहां आया आकाशस्तलिंगात, ब्रह्म सूत्र है आकाशस्तलिंगात, आकाश ब्रह्म है, क्यों उसका लिंग ज्ञापक शब्द है, क्या ज्ञापक शब्द, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन यातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिसंविशन्ति, सारे भूत की उत्पत्ति जिससे होती वही ब्रह्म है, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ज्ञान के लिए विचार करें, पहले प्रथम सूत्र हुआ ब्रह्म क्या है उसका लक्षण बताने के लिए, ब्रह्म सूत्र द्वितीय सूत्र है जन्मादि यत, जन्मादि अस्य यत जिससे, अस्य जगत इस जगत का जन्म स्थिति प्रलय जिससे होता है वही ब्रह्म है, तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय का कारण ब्रह्म है, ये लक्षण बताया, जगत उत्पत्ति के भूत भौतिक प्रपंच की उत्पत्ति स्थिति कारण ब्रह्म है, ये ब्रह्म का लक्षण बताया, यहां आकाशी सारे भौतिक उत्पत्ति कही गई, आकाशादेव इमानी भूतानी समुत्पद्यन्ते सारे भूत आकाश उत्पन्न होते और आकाश में लीन होते हैं, आकाश इनका आश्रय परायण, उत्पत्ति स्थिति प्रलतिन आ गया, आकाश उत्पन्न है आकाश में लीन भाई का आकाश में स्थित आकाश परायण, आकाश सारे भूत भौतिक प्रपंच का उत्पत्ति स्थिति कारण ब्रह्म है, इसलिए यहां जो आकाश शब्द आया आकाश इतिवाच, यहां आकाश का अर्थ ब्रह्म पर ब्रह्म है। ये ब्रह्म सूत्र आकाश तल्लिंगात ये सूत्र है, क्योंकि सारे भूत की उत्पत्ति आकाश के साथ, सारे भूत की उत्पत्ति आकाश से नहीं हो सकती, भूत आकाश से, कि यहां आकाश परमात्मा है, कि परमात्मा के लिए आकाश शब्द आया ब्रह्म सूत्र में विचार किया गया। सैष परोवर्यानुद्गित सैषो अनंत परोवर्यो हास्य भवती परोवर्यसु लोकांजयति ये तदेव विद्वान परोवर्यान समुद्गितमुपास्ते। सैष परोवर्य पर से ही सबसे उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, सबसे पर से भी वर्यान उद्गित है, उद्गित ऐसे प्रकार हुआ, अंत में सबका आश्रय हो गया परमात्मा। सहेश अनंत है, वही अनंत है, अपरिचिन्न है। परोवर्य हास्य भवती, इसको भी फल ऐसे प्राप्त होगा उपासक को। परोवर्य सो लोकान जयती, जो उत्कृष्ट लोक है सबसे वरियान, पर से भी वरियान श्रेष्ठ से भी बढ़कर के ऐसे लोग जीत लेता है। यह एतद एवं विद्वान, इसको जान करके परोवर्यांशम उद्गितम उपास्ते। परोवर्यान जो उद्गित है, परश्च वरश्च पर वरस्य भी वर वरियान पर है, और वरियान का था वरस्य भी उत्कृष्ट है वरियान, ऐसे उद्गित हुआ परमात्मा है, वो अनंत है, अंत जिसका नहीं है, परिच्छेद नहीं, अपरिच्छिन्न ब्रह्म है। ऐसा जो उपासना करता है ये भी अनंत फल को प्राप्त करता है, अनंत फल को प्राप्त करता है, स्वयं ऐसे उत्कृष्ट होकर के ब्रह्मादि सब को जीत लेता है, ब्रह्मलोक को ही प्राप्त कर लेता है उपासना से। और यदि ऐसे उपासना करता है निष्काम होकर के पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, पर ब्रह्म साक्षात, क्योंकि पर ब्रह्म ही हो गया उद्गित, उद्गित वहां से शुरू करके ओंकार शाम के अवयव उद्गित उसका भाव ओंकार उसके लेकर के अंत में उद्गित हो गया परमात्मा आकाश है, क्योंकि उद्गित का आश्रय का आश्रय का आश्रय करके अंत में सब का आश्रय हो गया परब्रह्म, परब्रह्म में आश्रित वही हो गया उद्गित है, तो उसकी उपासना जो करेगा वो परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तंग है तम अति धन्वा सौनक उदर शांडिला उक्त उवाच यावत् तेनम प्रजायाम उद्गितम वेदिष्यन्ते परो वरियो हैभ्यस्तावदस्मिन् लोके जीवनम भविष्यति। एक अति धन्वा नाम है सौनक है, उनका सुनक का पुत्र उनसे सौनक, उदर शांडिले भी उनको शिष्य, उनका शिष्य का नाम उदर शांडिल्य, उसको कहा उदर शांडिल्याय उक्त्वा उवाच, ये उपदेश क्या उद्गित अंत में लेकर परमात्मा रूप है आकाश रूप कह करके का यावत एनम प्रजायाम उद्गितम वेदिष्यन्ति, तुम्हारे पुत्र पौत्र आदि संतति में जब तक इस उद्गित को जानेंगे उपासना करेंगे तब तक परोवरियो हव्य उत्कृष्ट लोक की प्राप्ति होगी, सारे लोक में जीवन जितने उनसे भी उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जीवन होगा, श्रेष्ठ हो जाएंगे जीवित अवस्था में भी। ऐसे जो परमात्मा को उपासना करते हैं वस्तु तो वो भी श्रेष्ठ हो जाते हैं, इतने प्रसन्न इतने आनंद शांत हो जाते हैं, उनके सामने कोई धन संपत्ति का कोई कीमत कुछ नहीं, नाम ख्याति का कोई कीमत नहीं, परमात्मा के समीप जो पहुंच जाते हैं उत्कृष्ट ही हो जाते हैं, कोई भी भक्त सामान्य हो कुछ भी हो परमात्मा के समीप जो पहुंचेगा वही श्रेष्ठ है। ये तावत अस्मिन् लोके जीवनम, उनका जीवन इसे उत्कृष्ट हो जाएगा, आगे ऐसे परब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करेंगे, जो कामना से करेंगे ब्रह्मलोक को प्राप्त करेंगे, निष्काम हो तो परब्रह्म को प्राप्त करेंगे, साक्षात्कार हो जाएगा। तथा अमुस्मिन् लोके लोक इति सय एतदेव विद्वान उपास्ते परोवर्य एव हास्य अस्मिन् लोके जीवन भवति तथा अमुस्मिन् लोके लोक इति लोके लोक इति अमुस्मिन् लोके लोक इति परलोक में भी ऐसे फल प्राप्त करेगा, यहां तो जीवन ऐसे होगा आगे मरने के बाद भी ऐसे फल प्राप्त करेगा। सय एतदेव विद्वान उपास्ते, ये तो उदर शांडिल्य को उपदेश करके सौनक ने कहा था, कहते अविविज्य इसे उपासना करता है वो भी परोवरी आह अस्य अस्मिन् लोके जीवनम भवति। अविविज्य उपासना करेगा इस लोक में उत्कृष्ट जीवन होगा, कोई भी उद्गीत की उपासना करेगा परमात्मा उपासना करेगा इस लोक में जीवन उसे श्रेष्ठ जीवन होगा। और तथा अमुस्मिन् लोके लोक इति वो परलोक में भी इसे फल प्राप्त करेगा, इस लोक उसको प्राप्त हो जाएगा लोके लोक इति। यह नवम खंड समाप्त हुआ प्रथम अध्याय में, यहां तक हो गया ये उद्गीत उपासना करके। अब इसके आगे सांवर्ग उपासना है, सांवर उपासना के लिए कहेंगे पहले यहां ओंकार उद्गीत का अवयव साम के अवयव है, पांच भाग में एक भाग का नाम उद्गीत, उसमें एक है ओंकार, उससे ओंकारी की उपासना आई ओम इतेतद अक्षरम उद्गीतम उपासित। अनेक गुण से पहले रसतमत्व आपकी समृद्धि आदि गुण, फिर उसके बाद वही उद्गीत कहा, वही प्रणव कहा, उतर गीत कह करके उद्गीत नाम अक्षर उपासना भी कही गई। और कैसे उपासना करने के लिए सारा ब्रह्मांड आत्मक उद्गीत है, सूर्य आदि लोक इस लोक परलोक सारे पर ब्रह्मांड को प्राप्त करेगा। अंत में ये उद्गीत के ऊपर विचार करते करते उसका क्या आश्रय, उसका क्या आश्रय, उद्गीत तो सामने हो गया, आगे सब का आश्रय परमात्मा, वो परमात्मा ही वस्तुतः ब्रह्मांड का आश्रय, उसकी उपासना उद्गीत करके। और इसलिए कहा जो गान करते उद्गाता भी परमात्मा का गान करता है, जो वीणा वादन करते वो भी परमात्मा की स्तुति करते है, इसे धन संपत्ति को प्राप्त करते है। यही उद्गीत परमात्मा स्वरूप है। पहले तो परमात्मा ओंकार शब्द से कहा था, वाचक शब्द उद्गीत नाम लिया, आगे भी एक नाम बता दिया ऊत नाम, ऊत सबके ऊपर है, ऐसे उपासना करने वाले पाप रहित हो जाता है उद्गत पाप से। ऐसे उद परमात्मा है, परमात्मा जैसे निष्पाप है उसकी उपासना करने वाले भी ऐसे निष्पाप हो जाते हैं। पाप नष्ट होने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ब्रह्मलोक जो जाते हैं वो भी पाप निवृत्त होने पर ही ब्रह्मलोक जाते हैं, बहुत पुण्य होने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति। जो ये उपासना इसे करते हैं, मैं ही प्राण समष्टि हूं सर्वात्मक हूं, अथवा जो परमात्मा की निरंतर उपासना करते हैं भेद बुद्धि से भी हो, परमात्मा के चिंतन लगातार इतने करते हैं, उपासना करते करते तन्मय होकर के भेद बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। आरंभ तो उपासना करते भेद से, उपासना करते समय दाता ध्यान ध्येय त्रिपुटी का भान होता है, किंतु इतने तन्मय हो जाए फिर मैं ध्यान कर रहा हूं ये भावना भी नहीं रही, और परमात्मा में समर्पण ऐसे हो जाए अपने सत्ता कुछ अलग ही नहीं रखे। जब तक स्व सत्ता अलग पृथक रखे तब तक समर्पण भक्ति नहीं होती। भक्ति करते करते अंत में इतने समर्पण हो जाए पूरा, सब कुछ आपका है, सब कुछ आप ही है। पहले तो कहें सब कुछ आपका ही है, आपने बनाया, बाद में जो बनाया वो आपसे भिन्न कुछ नहीं, आप ही है, सारा जगत सब आप ही है। ऐसे करते करते इतने तन में अभिमान हो जाता है, आगे उपासना करके फल प्राप्त करेगा, देवत्व को प्राप्त करेगा, हिरण्यगर्भ लोक को प्राप्त करेगा, किंतु उपासना करते समय भी इतने तादात्म्य हो जाता है तो देव भूत्वा देवान अपिति, और देवत्व तो अभी उसमें प्रकट हो जाता है। ऐसे उपासना करते करते इतने हो जाता है कि अहम अस्मि समष्टि प्राण देवता मैं हूं, अंत में भेद से प्रारंभ करके फिर ऐसे ही हो जाता है, भेद बुद्धि नष्ट हो जाती, फिर अहंग्र उपासना हो जाती है। और जो उपासना का फल नहीं चाहता है, ये जो श्रौत उपासना आई ओंकार उपासना को लेकर के, इसका विचार करने से अंतकरण की शुद्धि होती है, परिच्छेद भाव जो ज्ञान के लिए प्रतिबंधक उसकी निवृत्ति होती है। बड़ा प्रतिबंधक है देह आदि में अहम बुद्धि, परिच्छिन्न बुद्धि समझे में आता है ब्रह्म व्यापक जीव ब्रह्म की एकता, किन्तु जब तक देह में अहम बुद्धि है आत्मा के साथ ब्रह्म हो गया किन्तु हम तो परिच्छिन्न है। ये पहले देह में परिच्छिन्न बुद्धि नष्ट करने के लिए भक्ति भी एक साधन है, योग मार्ग में भी योग अनुष्ठान करके निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करें, वो भी देह भार नष्ट हो जाता है। निर्विकल्प समाधि में जो रहते कुछ नहीं, देह आदि कुछ भार नहीं हो,
सुषुप्ति अवस्था में रहते हैं, द्वैत का भान नहीं होता है किंतु अज्ञान रहता है। निर्विकल्प समाधि से आने के बाद योगियों को भी संसार दिखता है, सत्यत्व बुद्धि होती है, किंतु एक स्थिति में रहते हैं उनको अनुभव में आ जाता है ये संसार के बिना भी मैं रहूं, रह सकता हूं, रहा था। ये संसार में जो तादात्म्य भाव देहादि के साथ वो नष्ट हो जाता है, ये होने के बाद ही ज्ञान होता है। जिनका ऐसे निर्विकल्प समाधि के द्वारा द्वैत में सत्यत्व बुद्धि नष्ट नहीं है, उनको ऐसे सौत उपासना करने पर ऐसे व्यापक चिंतन करते करते देह में अहम बुद्धि नष्ट होती है। और देह में अहम बुद्धि नष्ट हो जाए तो महावाक्य से अर्थ ज्ञान जीव ब्रह्म की एकता का साक्षात्कार होता है। तो ये जो उपासना है इसको थोड़ा इसे चिंतन करे, कभी समय मिले थोड़ा आगे पीछे विचार कर देखे सुने, जितने समय इसे विचार करे देखे उसे इतने ही लाभ होता है। और देह परिच्छिन्न बुद्धि नष्ट होती है, परिच्छेद नाश करने के लिए सारे उपाय है, उपासना है। देह मैं नहीं हूं समझ में आता है, मेरा देह तो मैं देह नहीं हूं, मकान मेरा तो मैं मकान नहीं हूं। कोई मकान को मैं मान ले कितने मूर्खता है, मकान में रहता है और वो कहे कि मैं मकान, कोई मानता है? और देह में रहने वाले अपने को देह माने तो जैसे मकान को मैं मानना है, इसी प्रकार ये भी देह के मकान ही चल निकेत है, अचल निकेत सब ब्रह्मस्वरूप ही चल निकेत है। इसे निकेत मकान को मैं नहीं मान करके आगे प्रारंभ करेंगे, नवम खंड समाप्त हुआ, आगे सुंदर कैसे आचार किस प्रकार जीवन समाप्ति के समय प्राप्त होने पर भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ये प्रकरण आगे है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोत निराकरणमस्त्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति, शांति।